السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اگر اس حال کے سارے دروازے ساری کھڑکیاں بند کر دیے اور اندر بہت زیادہ ہجوم ہو تو یقیناً دم گھٹے گا، اور جب دم گھٹے گا تو طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوگی، اور جو انسان سکون سے بیٹھا ہے اس کا سکون ختم ہو جائے گا. انسان کی فطرت ہے، انسان اپنی طبیعت اور اس فطرت سے چلتا ہے. ہماری زندگی میں جتنے بھی سکون کے دروازے ہیں اور چین کے دروازے ہیں آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں. اپنے ریشم کا کیڑا شہد نہیں دیکھا، شہتوت کا پتا ریشم کے کیڑے کی مرغوب غذا ہے، پسندیدہ غذا ہے، اور اسے اپنا گھر بنانے کا بہت شوق ہے، اور وہ ریشم کا کیڑا اپنا گھر بناتا ہے اور اپنے لعاب سے اپنا گھر بنتا ہے. ہماری ادویات میں خمیرہ استعمال ہوتا ہے، خمیرہ ابریشم، اس میں وہ چیز ڈلتی ہے، ابریشم کا گھر، کیڑے کا گھر وہ ڈلتا ہے. تو ہم جب ان کو خمیرے کو بناتے ہیں تو اس ابریشم کو کاٹتے ہیں، اس سے مرا ہوا کیڑا نکلتا ہے. یہ کیا اپنے گھر میں خود مر گیا، شکاری خود شکار ہو گیا؟ یہ کیا وہ گھر بناتا ہے، بہت خوبصورت گھر بناتا ہے. ریشم کا گھر کتنا لگژری گھر ہوگا، کتنا خوبصورت گھر ہوگا، کتنا باکمال گھر ہوگا. ریشم کا گھر تو ریشم ہوتا ہے. گھر بناتے بناتے فکر دنیا میں اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا مصروف ہوتا ہے، اپنی واپسی کی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے. واپسی جگہ نہیں چھوڑتا، بھول جاتا ہے. جب واپسی کی جگہ نہیں چھوڑتا اور بھول جاتا ہے تو اس کا دم گھٹنا شروع ہوتا ہے. جب دم گھٹنا شروع ہوتا ہے، ابھی چھوٹا سا سوراخ باقی ہوتا ہے جس سے کوئی آکسیجن ہوا کا سلسلہ اس کے درمیان آتا رہے، وہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بھول جاتا ہے. اور بھولتے بھولتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دم گھٹنے سے خود مر جاتا ہے. اور جب ہم ابریشم کو کاٹتے ہیں، اس کا خول ہوتا ہے اندر، تو اس کے خول سے مرا ہوا موٹا سا کیڑا ہم نکالتے ہیں، اس کو نکال کے پھینکتے ہیں، پھر وہ دوا میں ہم استعمال کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے چین اور سکون کے سارے دروازے بند کر دیے ہوں، اور زندگی اور چین اور سکون کے سارے راستے بند کر دیے ہوں، اور زندگی اور چین اور سکون کی ساری کھڑکیاں بند کر دی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں. اور پھر کہیں ہم دوبارہ دم گھٹتا ہے، اور جب دم گھٹتا ہے تو اس کو دم گھٹنے کو ختم کرنے کے لیے دم گھٹنے کی دوائیں کھاتے ہیں. دم گھٹنے کی دوائیں بھی کھاتے ہیں، دم گھٹنے کے لیے دم بھی کراتے ہیں، اور کھڑکیاں مسلسل بند رکھی ہوئی ہیں. मुसलसल बंद रखी है। भाई मैं उस तरफ गया खवातीन की तरफ उनकी दरखास्त करने मिन्नत करने के लिए। मजमा बहुत ज्यादा है, खवातीन के बड़ा सबर है, हिम्मत है, हौसला है, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनकी नस्लों को शाद आबाद रखे। बहुत ज्यादा खवातीन भरी हुई हैं, लेकिन हफ्स नहीं है, खिड़कियां खुली हुई हैं। मदीने वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले मुआशरे का निजाम कुछ और था, वो असल में टेंशन ज्यादा मुआशरा था, या आज टेंशन ज्यादा मुआशरा है। आप कहेंगे वहां उस भी टेंशन थी, हाँ वो सख्त तरीन टेंशन ज्यादा मुआशरा था। उस मुआशरे में इतनी एंग्जाइटी, इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन था कि वो थोड़ी थोड़ी बात पे इंतकाम पे उतर आते थे, और थोड़ी थोड़ी बात पे काट देते थे, मार देते थे, कत्ल कर देते थे, कीना हसद दिल में रखते थे थोड़ी थोड़ी बात पे। जब टेंशन ज्यादा हो तो कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है, क्या सच है? कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है। वो मुआशरा टेंशन ज्यादा मुआशरा था, और मेरे आका ने उस मुआशरे को टेंशन से निकाला और सुकून और सुख दिया और चैन और आफियत दी, और उन्हें एक जिंदगी का सबक दिया कि तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, वो फरिश्ते हैं, और तुम्हारे कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं तुम नहीं जानते, वो शयातीन और जिन्नात हैं। फरिश्ते दोस्त हैं हमारे, देख नहीं सकते। जिन्नात शयातीन दुश्मन हैं हमारे, हम देख नहीं सकते। कभी किसी ने फरिश्तों को देखा? नहीं देखा। जिन्नात नहीं देखे, हवा है, तो कहते हैं हवाई मखलूक। एक दोस्त है नजर नहीं आता, एक दुश्मन है नजर नहीं आता। दोस्त भी नजर नहीं आता और दुश्मन भी नजर नहीं आता। ये मेरे आका ने अर्श से कोई पैगाम लाके मुझे आपको दिया कि हमारे दाएं बाएं कुछ दुश्मन भी है, दोस्त भी है। एक आंख है ना हमारी आंख, इस एक आंख को 99 फरिश्ते, इस एक आंख को 9 फरिश्ते हैं, 9 फरिश्ते, 9 फरिश्ते जो इस आंख की हिफाजत करते हैं। क्यों? ये एक बुलबुला है, एक छिल्ली है छोटी सी, 9 फरिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं, ताकि अनदेखे दुश्मन इसको नुकसान ना पहुंचाए, और हिफाजत करते हैं अनदेखे दोस्त, कि अनदेखे दुश्मन इसको नुकसान ना पहुंचाए। हमारे कुछ अनदेखे दुश्मन हैं, हमारे हर वक्त साथ हैं, और खास तौर पे जब हम जेरे नाफ कपड़ा हटाते हैं, जिसे हम नंगा होना कहते हैं, नंगे होते हैं मजबूरन पेशाब पखाने के लिए, हाजत के लिए, उस वक्त वो दोस्त हमारी हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हैं, और दुश्मन हमें नुकसान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में कशमकश होती है। अगर तो दोस्तों को बुला लें हम, तो दोस्त आके उनको हटा देते हैं और आगे नूर का पर्दा लगा देते हैं, जिनको वो भी नहीं देख सकते और उन्हें भी नहीं देखने देते। बात नहीं समझ आई मेरी? फिर सुने, जब हम बैतुल खला में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तो एक तरफ से हमारे दोस्त आते हैं और एक तरफ से हमारे दुश्मन आते हैं। एक तरफ से दोस्त आते हैं, एक तरफ से दुश्मन आते हैं। अगर तो हम दोस्तों को आवाज दे दें, दोस्त हमारी आवाज पे लबैक कहते हैं और कहते हैं मरहबा, ठीक है, हमें पुकारा, हम हाजिर हैं। और अगर हम दुश्मनों को आवाज दें, दुश्मन आ जाते हैं। दोस्तों को किन लफ्जों से पुकारना है, वो लफ्ज मेरे आका ने मसनून दुआ की शक्ल में दे दिए हैं कि फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते हैं, नूर की चादर तान लेते हैं, तुम्हें नंगा होने से बचाते हैं, न खुद देखते हैं न उन्हें देखने देते हैं, न खुद ओ तुम्हें वैसे भी शरारत नहीं करते कि फरिश्ते में शरारत है ही नहीं, और जो शरारती चीजें हैं उनसे तुम्हें बचाते हैं, उनसे तुम्हें बचाते हैं। जब से मैंने साल हर साल हो गए इस बैतुल खला की दुआ की तहरीक शुरू की, तहरीक साल हर साल हो गए मुझे, ये बैतुल खला की दुआ मेरी इजाद नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से मैंने इसको पेश किया मैं उसको तहरीक कह रहा हूं, इसके ऐसे नताइज सामने आए, इसके ऐसे कमालात सामने आए कि आम बंदा कहता था वाकई बात तो ठीक है, हम तो इसको समझे बस यही थे, ठीक है मसनून दुआ है, पढ़े सवाब मिलता है, लेकिन उस सवाब के अंदर जो हमारी दुनिया की हिफाजत, दुनिया की किफायत और दुनिया की सिक्योरिटी का निजाम है, वो तो कोई अकल ही दंग रह गई कि उस हिफाजत के अंदर क्या निजाम है, अकल हैरत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन था कि हमारे हमारे टॉयलेट में फैमिली रहती है, हाँ फैमिली रहती है, हर बैतुल खला में फैमिली रहती है। आप कहेंगे अजीब बात तारिक, हमें तो आज तक नजर नहीं आया, कोई मई नजर नहीं आई, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई चीखो बुखार नजर नहीं आई। आप तू कहता है कि तारिक की जो फैमिली रहती है, मैं नहीं कहता, मेरे मदीने वाले ने फरमाया, मैं मदीने वाले का देखा आपको बता रहा हूं। मेरे पास ना एक दफा यहाँ लाहौर में खानपुर नहर है शेखोपुरा रोड पे, वहां एक गांव है बुद्धू वाला, बुद्धू, मैं गांव में गया, ये बात है आज कोई 18-19 साल पुरानी, मैं वहां गया तो वहां एक बंदा आया, मुझे कहने लगा कि मौलवी जी मेरा भाई फौत हो गया, चोरी चोरी भी कर लेता सी, चोरी भी कर लेता था, और लोगों के जानवर भी खोल लेता था, और भी बदमाशियां सारी बताई कर लेता था, बस ग्यारहवीं शरीफ बड़ा पकड़ता सी हो। ये बताओ, ये बताओ वो जन्नत में है या दोजख में है? अब ये मुझसे सवाल किया, चोरी भी कर लेता था, सारे उल्टे सीधे काम भी थे, मेरा भाई फौत हो गया, ये बता वो जन्नत में है या दोजख में है? मुझे कहने लगा देख के अभी बता, सुना हुआ है कि तू पहुंची हुई सरकार है। पीर साहब गए, बात कहां से मैंने चल छोड़ी थी, ये याद रखिएगा आप तवज्जो से, वो एक पीर साहब गए कहीं अपने मुरीदों के पास, तो नमाजें वगैरह बहुत सारी वो छोड़ देते थे, तो एक दफा उनकी जो मुरीदनी थी, खातून थी, जो घर से खाना पका के भेजती थी, वो दुर्वेश अल्लाह अल्लाह करने वाली थी, जागरे हैं, वो अल्लाह अल्लाह करने वाली थी, वो कहती थी अपने शोहर को तेरा कैसा पीर है जो तस्बीह जिक्र नमाज अमाली नहीं करता। उसने पीर साहब से कहा, उसने कहा तेरी जो बीवी है तो उसने पांच वेले की पढ़ी है, मैं हर वेले दी पढ़ना। थोड़ी पांच वेले दी साड़ी हर वेले दी, ठीक है फिर सब हो गए ऐसे। सुबह उसने फजर की नमाज ना पढ़ी, सुबह बड़ी तसल्ली से उठा तो उसने पीर साहब से पूछा, पीर साहब के उसने पीर साहब से पूछा कि पीर साहब आपने वो फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी। कहने लगी पागल तुझे पता है मेरी फराम मुरीद था, उसके घर आग लगी हुई थी, मैं आग बुझाता रहा सारी रात, मेरी ड्यूटी लगी हुई है तो पता तो है तुम्हें कि पीर दिलों में बसता है, मैं आग बुझाता रहा। उसने सेवियां पकाई और सेवियों में मीठा नहीं डाला और सबसे आखिर में मीठा डाल गया, ऊपर सेवियां रख दी, सब कुछ कर दिया। तो पीर साहब ने जो सेवियां खाई कहने लगे सेवियों में मीठा तो है नहीं। उसने कोई तवज्जो ना दी, उसने फिर कहा कि सेवियों में मीठा नहीं। उन्हें कहा पीर साहब फलां शहर में आपको जलता मकान नजर आता है, नीचे बैठी सेवियों में ये चीनी नजर नहीं आते। जब से मैंने ये तहरीक शुरू की है कि बैतुल खला से हमारे मसाइल उलझते हैं और हमारी जिंदगियां बहुत ज्यादा बर्बादियों और नाकामियों की तरफ जाती हैं, मुझे इसका जो रिस्पांस मिला है, मुझे इसका जो रद्द अमल मिला है वो हैरत अंगेज मिला है। और वाकयात मिले हैं और मुशाहदात मिले हैं और तजर्बात मिले हैं और मिले हैं वाकयात तजर्बात मुशाहदात और ऐसे ऐसे मिले हैं, खुद मेरी अकल दंग रह गई। ऐसे ऐसे मिले हैं और फिर एक पल में याद आया सदक्त या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सच्चे हैं, आपका फरमान सच्चा है और आपकी हदीस सच्ची है और आपकी मसनून दुआएं सच्ची हैं, आप सच्चे, आपका रब सच्चा है। इस तहरीक से एक अंदाजा हुआ कि असल में हम अपने मसाइल और मुश्किलात के लिए जितने दरवाजे मेरे रब ने बंद करने थे वो हमने खोले हैं और मेरे रब ने कह दिया कि ये खोल के रखो, हमने बंद कर दिए और हमारे यूं मसाइल और मुश्किलात बढ़ते 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 और जिंदगी जो है वो इन्हीं उलझनों में आखिरकार फैमिली रहती है। फैमिली बताऊं कैसे रहती है, खुबस कहते हैं खुबों से वल, खुबस कहते हैं किसको, खबीस जिन औरत और खबाइस, खबीस जिन मर्द, तो मई बाप रहेंगे तो फैमिली रहेगी, मई भी होगी जवान भी होगा फैमिली है और बच्चे ही बच्चे फिर बच्चे ही बच्चे, वो पूरी फैमिली वहां रहती है, उन्हें गंदगी मतलूब है। वो बाद लोग ऐसे होते हैं बेचारे बेवकूफी को समझ बैठते हैं कि शायद हमने 40 लाख का टॉयलेट बना लिया, टाइलें लगा के शीशे लगा के कमकमे लगा के और बड़े बड़े फानूस लगा के हमने लगा लिया कि शायद हम ये हमारी दीवानगी है, ये हमारी भूल है और ये हमारी गलती है। कि हम शायद ये करके हम बच गए। किसने कहा? सारी साइंस अपनी तरक्कियां समेट ले और सारी साइंस की तरक्कियों की आखिर हो जाए, तिलकल अय्याम नुदा बिलोहा बैन अन्नास, पहुंचेगी वहीं जो मेरे मदीने वाले ने फरमाया और हक की आवाज हकायक को जो मेरे आका ने फरमाया, वही जिंदगी है, उसके अलावा कोई जिंदगी है ही नहीं, उसके अलावा कोई हकीकत है ही नहीं। सारी दुनिया अपनी आखिरी जिंदगी में पहुंच जाए। हमारी बीमारियों की अक्सर बुनियाद जहां और वजूहात हैं, हमारे मसाइल की अक्सर वजूहात जहां और वजूहात हैं और बुनियादें भी हैं, उनमें एक बैतुल खला भी है, बैतुल खला भी है, जिसे हम कोई तवज्जो नहीं देते। मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा कि आप दुआई पढ़ा करें। कहने लगे, आपने देखा नहीं मेरे धोती बांधी हुई है? हाँ, दुआ पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, तो शुक्र है धोती के साथ कुछ बचा जाती है मेरा। अगर अगर तुम्हारी तरह मैं शलवार पहनता तो वो तो नुकसान होता, अगर मैं पैंट पहनता तो खोलते 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 पता नहीं मेरा पोंचो से नीचे काम निकल जाता। आपको पता नहीं मैंने धोती पहनी हुई है, इसका वक्त मुझे मिलता ही कहाँ है। इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। मसनून दुआएं हमारी जिंदगी की हिफाजत का निजाम बनाती हैं, मसनून दुआएं हमारी हमारे लिए आफियत का निजाम बनाती हैं, और मसनून दुआएं हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोलती हैं। इसलिए सोचना पड़ेगा, जहां भी हमारी नजर मदीने वाले के फरमान और मदीने वाले के मुबारक बोलों से हटेगी, जिनको हम मसनून दुआएं कहते हैं, जब भी हमारी नजर हटेगी कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मुझे खत आया, एक खातून का, और उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी की पाकीजगी आपके दर सुना है नहीं, वो अबकरी में ना बैतुल खला की तबाहकारियां, वो मेरा जो एक सफा आता है सफा दर्स का, दर्स हिदायत, उसमें छपता रहा, उसमें मैंने खत पढ़ा कि जी मैंने आपके जो है बैतुल खला की दुआओं से अपनी जिंदगी की तहारत पाई है। और मैंने सोचा था कि कभी मैं भी कोई नेक बन सकूंगी। माँ बाप में तलाक हो गई, बाप ने मुझे ले लिया और अपनी बहन को दे दिया जो कि मेरी फूफी लगती थी, और बहन उस वक्त मैं 7-8 साल की थी। मैं देखती थी मेरी फूफी के घर बहुत से लोग आते जाते रहते थे और मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी, और आखिरकार मेरी फूफी ने मुझे अपनी राहों पे लगा लिया और मेरी उम्र अब 32-33 साल है। मैं उन राहों पे लगे लगे एक दफा कहीं से रिसाला मिला और इसका एक ही सफा पढ़ा, फिर मुझे जौक हुआ, फिर मैंने खुतबात अबकरी किताब उठा के पढ़ा, फिर पता चला कि आपका ये दर्स भी है, फिर नेट पे चली उस पे मैं ये दर्स सुना, और दर्स सुनने के बाद मैंने अपने ये दुआ याद की, मुझे याद नहीं थी, पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी देर में याद कर ली 1-1.5 दिन में। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू की तो कहने पढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि कोई ताकत है वो जो रोकती है कि ये ना पढ़, और मेरे मुरे अंदर एक इहतजाज पैदा होता है कि ये दुआ ना पढ़। मैं खत पढ़ रहा था बैठ, ये ना पढ़, फिर मैंने महसूस किया कि जिस ताकत ने ये मुझे कर रही है, लगता है वही मेरी दुश्मन ताकत है, तो उस दुश्मन ताकत के लिए मालूम हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने तादाद और बढ़ाई, उन्होंने और पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मुझसे मैं बीमारियों मुबतला हो गया, मुझसे वो सेहत वो सारा चीजें वो छिनना शुरू हो गई। और मैं हैरान हो गई कि या अल्लाह, मैंने तो तेरी नेकी की तरफ कदम उठाया था, मेरे पर तो बीमारियां आना शुरू हो गई, मसाइल आना शुरू हो गए, पता नहीं मुझे कोई चीज तसल्ली दे देती थी। फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना शुरू, बस यही दुआ, बैतुल खला के अलावा पढ़ना शुरू किया। सारा दिन पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। फिर लगा कि मेरी एक सहेली थी, वो जो मेरी राहों में थी, हम जो है इकट्ठी राहें हमने अख्तियार की थी साल हर साल, एक दफा मुझे वो मिली, वो सहेली वो बाहरले मुल्क चली गई, वो एक दफा पाकिस्तान में आई, उसने मुझे कॉल किया और आके मुझे मिली। और मुझे मिलने के बाद मैंने देखा कि उसका रंग रूप जो है और उसकी जिंदगी का दिन रात अजीब है, वो नहीं थी जो गई थी। तो मैंने उससे पूछा कि तू कैसे बदली, बस उसने फिर अपने बदलने की कहानी सुनाई। उसके बदलने की वजह अबकरी नहीं थी, कुछ और था, अपने बदलने की अपनी दास्तान सुनाई। और दास्तान सुना सुना के तो मुझसे कहने लगी कि तू क्या चाहती है। कहने लगे ये देखे, उसने मेरा सफा पढ़ाया, कहने लगे इसने ठीक लिखा है, तो ये दुआ पढ़। फिर मैंने उसने अपने मसाइल बताए कि मैंने जब से ये पढ़ना शुरू किया है मेरे ऊपर तो मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं, परेशानियां आना शुरू हो गई हैं। कहने लगे उसने कहका लगाया, मेरी सहेली ने हंस के कहा, तू कहती है कि मैं गला भी दबाऊं और आंखें भी बाहर ना आए, वो तो आएंगे। तूने जिन चीजों का इस दुआ के जरिए गला दबाया हुआ है उनकी आंखें तो बाहर आएंगी, जब उनकी आंखें बाहर आएंगी तब तुझे थोड़ा सबर करना पड़ेगा, हौसला बढ़ना, और इसी दुआ को मुसलसल पढ़, यही दुआ तेरी उन राहों से भी निजात दिलाएगी, यही दुआ यही मंजिल यही रास्ता। कहने लगे मैंने हिम्मत की, मैंने हौसला किया और इस दुआ को मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। मजीद पढ़ते पढ़ते एक वक्त आया, मुझे एहसास हुआ मेरे अंदर ताकत बढ़ गई है, कुवत बढ़ गई है, और मैं अब गुनाहों के सामने ढाल बन रही हूँ, जबकि पहले मैं अपने आप से बेबस हो जाती थी। और कहा जिंदगी बढ़ते बढ़ते आज आलम यह है कि बाजमात पांच वक्त नमाज पढ़ती हूँ और बहुत तवज्जो करती हूँ जिक्र आमाल पाकीजगी में, और मैंने अपनी जिंदगी के दिन रात बदल दिए हैं, और मेरी जिंदगी के दिन रात के बदलने में सिर्फ एक चीज का हाथ है, वो है यही दुआ। आपकी तो फैमिलियां इंतजार करती हैं, बैतुल खला में फैमिली आपकी इंतजार करती है, हमारा शिकार कब आएगा। मैंने कई बार मकड़ी को मक्खी शिकार करते देखा, मकड़ी कैसे आ रही कैसे आ रही, ये आई एकदम चुपती 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 मक्खी बैठी है एकदम आई, या मकड़ी ने ऐसा जाल बिछाया हुआ उड़ती मक्खी उसके जाल में थोड़ा सा अड़ी टकराई तो मकड़ी एकदम भागी। तो मैंने खुद आंखों से कई दफा देखा वो अपना जाल उड़ के इर्द गिर्द बुनती है, बुनती उसको पक्का करने के लिए, फिर मुंह मार के उसको शायद वो डसती है या काटती है कमजोर करने के लिए, फिर जाल बुनती है फिर जाल बुनती है, हत्ता के वो तड़पती रहती है, चीखो पुकार करती रहती है। मकड़ी अपना जाल बुनते 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 एक वक्त आता है उसको अपने जाल में फंसा लेती है। मक्खी को जैसे जाल नजर नहीं आता और जाल की तारें और तंदे और जाल का नेटवर्क नजर नहीं आता, ऐसे ही मुझे आपको बैतुल खला में उस फैमिली का जाल नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। हम देखते हैं दरवाजा बंद है, ऊपर नीचे से कोई देख तो नहीं रहा, मेरा सतर खुला मैं नंगा हो गया, जब दरवाजा बंद है ऊपर नीचे से कोई नहीं देख रहा, बस मुतमैन हूं मैं, अंदर कोई है जो पहले से था, उसको तो उन्होंने निकाला ही नहीं, वो तो पहले से था, उसको तो उन्होंने निकाला ही नहीं। मैं सोचता हूं ये एक मसनून दुआ के कमालात हैं जो मेरे रब ने थोड़े से मुझ पे खोले हैं, उसमें भी सौ खामियां सौ कमियां हो सकती हैं, मेरे आका मदीने वाले की कितनी दुआएं ऐसी हैं, बेशुमार सैकड़ों हजारों दुआएं, हर दुआ में क्या नूर होगा और मेरे मदीने वाले का नूर होगा क्या जो हर दुआ में इतनी तासीर है। एक दुआ के अंदर ये कैफियत है। क्या ख्याल है, आप लोगों के सामने नंगा होना पसंद करेंगे? जो करेंगे वह हाथ खड़ा करें। एक हाथ खड़ा हुआ, दूसरा। सोता बंदा ऐसे होता है, देखना। चलो शुक्र है, बहुत सारे और जाग गए। हम नहीं चाहते हमें कोई नंगा देखे, हम नहीं चाहते। दुनिया का बेहया से बेहया इंसान जिसने हया को बेच के खा लिया हो, उसकी भी फितरत में, सरिश्त में, छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, वो भी नंगेपन को पसंद नहीं करता। छोटा सा बच्चा है। हम फैमिलियों के सामने नंगे हो जाते हैं, और नंगे होके, नंगे होके, और हम मुतमैन हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा, आपको तस्बीखाने में कोई कहेगा मुझे विलायत मिली, कोई कहेगा मैं नमाजी बन गया, कोई कहेगा मुझे फला जिक्र फला तस्वीर से ये फायदा हुआ, कोई कहेगा मुझे ये मिला, कोई कहेगा ये मिला। मैं आपको बताऊं मुझे क्या मिला, मुझे कहने लगा, मैं आपको बताऊं मुझे क्या मिला, मैंने कहा बताओ, कहने लगा मेरी खिड़की बंद हो गई है, बस ये तस्बीखाने के दर से मुझे ये मिला। मैंने कहा खिड़की से मुराद क्या है, इसको क्यों नीचे फेंक रहे हो, इतनी सर ऊपर लगा, उतार रहे हैं ना। हाँ, मैंने कहा शायद नीचे फेंक रहे हैं। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था, कहने लगे मैंने क्या, मेरी खिड़की बंद हो गई जी, मेरी खिड़की बंद। मैंने कहा खिड़की क्या है, कहने लगे मेरा तीसरी मंजिल पे एक हमारा टॉयलेट है, वो टॉयलेट की खिड़की पीछे एक फैमिली में खुलती है, और उनकी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और मैं घंटों खड़ा होकर उनको देखता था और वो मुझे नहीं देखते थे, और घंटों मैंने उनको खड़ा होकर नंगा भी देखा, हर हालत में भी देखा। उनका गुसल खाना ऊपर था जिसकी छत नंगी थी, कहा मैं देखता था कि तस्बीह खाने से मेरी खिड़की बंद हो गई है, और मेरी नजरों में हया आ गया है, मेरी नजरों में शर्म आ गया है, और मैंने एक दफा सोचा वो नहीं देख रहे, तुझे वो देख रहा जिसको तू नहीं देख रहा, वो अल्लाह है। मेरी खिड़की बंद हो गई। हमें कोई देखता है, हम तो नहीं उसे देखते, हमें कोई देखता है और ऐसे अंदाज से देखता है हम परख ही नहीं सकते, हम पहचान ही नहीं सकते। हम क्यों चाहते हैं कि हमें कोई नंगा देखे। यहां तक लिखा है, जो शख्स दुआ नहीं पढ़ेगा, मेरे आका मदीने वाले की मसनून दुआ नहीं पढ़ेगा, उस शख्स के बारे में यहां तक लिखा है कि शैतानी चीजें उसकी शर्मगाह से खेलती हैं, मर्द हो या औरत हो, और फिर उसकी वो शर्मगाह के फितने में मुब्तला हो जाता है, और शर्मगाह के गुनाहों में, और शर्मगाह की मासीयत में, और शर्मगाह के ऐबों में मुब्तला हो जाता है। क्यों? वो ऐसा फितना पैदा करते हैं कि उसकी जिंदगी के चाहते और ख्वाहिशें नाजायज इतनी बढ़ जाती हैं कि उसका दिल ही नहीं भरता, और फिर दिन में वो जितनी दफा जाएगा उतनी दफा वो शर्मगाह से खेलेंगे और उसकी वजह से वो गुनाहों की जिंदगी में कहां से कहां चला जाएगा। और जो बंदा पढ़ लेता है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खुबस वल खबाइस, जो ये पढ़ लेता है गैब के खजाने से रब फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं और मेरा अल्लाह पाक करम के खजाने खोलते हैं और उसके इर्द गिर्द एक चादर तान लेते हैं नूर की, और वो नूर की चादर से अल्लाह उसको महफूज कर देता है, ये जालिम चीजें उसको कुछ कर ही नहीं सकती। एक दुर्वेश थे, उनको कश्फ होता था। कश्फ किसे कहते हैं बताओ? उनको कश्फ होता था। कश्फ कहते हैं जिसके दिल की आंखें खुल जाएं। चेहरे की आंखें तो सबकी हैं, दिल की आंखें सबकी नहीं होती। अल्लाह तेरी मेरी आपकी दिल की आंखें खोल जाए, अल्लाह मेरी आपकी दिल की आंखें खोल दे, मरने से पहले खोल दे। उनके दिल की आंखें खुली थी, वो वुजू करते हुए बंदे को देख लेते थे कि इसके ऊपर नूर की चादर फरिश्ते तानी हुई है या नहीं तानी हुई। जो बंदा वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, क्या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, चार फरिश्ते नूर की चादर उसके ऊपर तानते हैं, एक वो कोना पकड़ता है, एक वो कोना, एक वो कोना, चारों कोनों पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर नूर की चादर तान लेते हैं, उस वक्त तक जब तक के वो गैर जरूरी बात न करे, उस वक्त तक वो नूर की चादर को थामे रखते हैं। जिसके ऊपर नूर की चादर होती है वो जुल्मतों से, जिल्लतों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, हादसों से, हवाज से, क्राइसिस से, नजरे बद से और शैतानी चीजों से बचता है, कि नूर के अंदर एक अपनी ताकत और तासीर है कि नूर इन चीजों से उसको बचाता है। इसी तरह जब बंदा बैतुल खला में जाता है तो उसके इर्द गिर्द फरिश्ते जो है नूर की चादर तान लेते हैं, इस दुआ के पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक उसको बहुत बहुत बदतरीन बीमारियों से बचाता है। आपको मैंने एक वजीफा बताया था, जो बंदा जेर नाफ बीमारियों से बचना चाहता है वो सिर्फ 11 दफा पढ़े अल मालिको अल कुद्दूसो अस्सलाम। आप इसके माने पे जाएं, जरा गौर करें, अल मालिको अल कुद्दूसो, कुद्दूस किसे कहते हैं, पाकीजा, अस्सलाम सलामती देने वाला। जो बंदा ये दुआ पढ़े 11 बार, कितनी बार, 11 बार ये दुआ पढ़ता है जो बंदा, अल्लाह गैब के खजाने से उसको जेरे नाफ की तकलीफों से बचा देता है। जेरे नाफ दाने हैं, एलर्जी है, जेरे नाफ के किसी ऐब में मुब्तला है, जेरे नाफ के किसी गुनाह में मुब्तला है, जेरे नाफ की किसी शरारत में मुब्तला है, या जेरे नाफ की किसी शरारत से बचना चाहता है, और 11 बार पढ़ ले अल मालिको अल कुद्दूसो अस्सलाम, बस हर नमाज के बाद पढ़ ले, सुबह शाम पढ़ ले, बहुत अनोखी चीज है। इसमें जो अल कुद्दूस आता है ना, वो अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकीजगी को पसंद करता है, और जो पाक हस्ती होती है वो पाक रहना को पसंद करती है और पाक कर देती है जिसको बैतुल खला की फैमिली ने नापाक किया होता है। टॉयलेट की जो फैमिली है ना, जो टॉयलेट फैमिली है, उसने उसको नापाक किया होता है। अमल छोटा सा है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है, उसकी तासीर बहुत बड़ी है, उसका कमाल बहुत बड़ा है। अमल छोटा सा है और उसके अंदर की कुव्वत बहुत ज्यादा है, अमल छोटा सा है। और फिर इसके जो फायदे खुलना शुरू हुए बैतुल खला की दुआ के, वो और अजीबोगरीब फायदे खुलना शुरू हो गए। कहने लगे जी मैंने मियां बीवी के झगड़ों में पड़ा फायदा हुआ, मैंने मोहल्ले के झगड़ा हो रहा था उसमें पड़ा फायदा हुआ, मैंने गुनाहों से बचने के लिए पड़ा फायदा हुआ, मैंने खैर को पाने के लिए पड़ा फायदा हुआ। क्यों? उसकी वजह यह है वो फैमिली जो शरारतें और मुसीबतें और जो तकलीफें और जो फितने और जो चीजें छोड़ती है उस फैमिली से जब बच गया तो सारी मुसीबतों से बच गया। तो फिर तो बात ठीक है, इसकी पक्की बात है, ये धोखा फरेब नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरी जिंदगी की ये बातें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सोचें मैं आपको 14 सदियां पहले पत्थर के जमाने की बातें नहीं कर रहा, बल्कि आज 14.5 सदियों के बाद भी मैं आपको वो साइंसी हकायक बता रहा हूं जिसको सारी दुनिया की साइंस अब रिसर्च करने पे पैरासाइकोलॉजी के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी और पता नहीं रूहानियत और किस चीजों के नाम पे पूरी दुनिया जो है जिन्नात को इस वक्त रिसर्च कर रही है, जादू को रिसर्च कर रही है। नेट की दुनिया में घूमने वालों को पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया जादू और जिन्नात के पीछे पड़ी हुई है और पुरसरार दुनिया पुरसरार सोचे और उसने तवज्जो को हिप्नोटाइज कर का नाम दे दिया और उसने तवज्जो को भेजने को टेलीपैथी का नाम दे दिया। पूरी दुनिया इस काम पे लगी हुई है, साइंस ने उसके नाम मुख्तलिफ रख लिए। असल वो मसनून दवाई की बरकत है जो उन्होंने अपने अनोखे नाम रख दिए। दिन में पुरानी एक बीमारी थी जिसको काला यरकान कहते थे, यरकान अस्वद, उसको हेपेटाइटिस का नाम दे दिया। बीमारी तो पुरानी है और इसके इलाज भी वही बिल्कुल सीधे सादे से मौजूद है। हमने सारी खिड़कियां बंद कर दी हैं सुकून की। बैतुल खला की बीमारी सुकून की खिड़की थी। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह खाने से पढ़ना पहले या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना खाने से पहले, यह सुकून की खिड़की थी, हमने बंद कर दी। हमने घुटन खुद पैदा कर दी, घुटन खुद पैदा कर दी। आप चाहते हैं कि एक गंदगी में लिटा हुआ कुत्ता, आप चाहते हैं एक गंदगी में और गिलाजत में लिटा हुआ बंदर, आप चाहते हैं कि एक गंदी नाली में बैठा हुआ खिंजीर आपके खाने में साथ शामिल हो। वो तो रोज आपके होते हैं। अगर मैं भी भूल जाऊं तो मेरे भी होते हैं। आप कैसे कहते हैं नहीं होता? ये तो रोज होता है। वो जो फैमिली है ना जो टॉयलेट में रहती है, वो खाती आपके घर है, ख्याल करना। हाँ, वो जो टॉयलेट फैमिली है ना, वो कहीं कराची से नहीं आती, वो कहीं दिल्ली से नहीं आती, वो आपके घर रहती है। हाँ, कांग से नहीं आती, आपके घर रहती है। खाना भी यही, पीना भी यही। इस फैमिली का आज कुछ करना है हम। ये जो नाजायज काबजीन है ना, इनको निकालना है, बेदखल करना है। अल मदद, अल मदद। मेरे मकान पे कब्जा कर रहा हूं। ये अल मदद कहीं से लानी है? ये जो फैमिली रहती है ना हमारे घर में, खाती है, हमारा खाती है, हमारा पहनती है, हमारा पीती है और हमें भौंकती है, हमें घुराती है। कैसी अजीब फैमिली है। और हम भी कैसे मतमैन है, उस फैमिली को घर में फ्लैट पूरा दिया हुआ है और अब तो हमारे घर में उस फैमिली के फ्लैट बढ़ गए हैं अटैच बात के नाम में। फ्लैट बढ़ गए, बड़े फ्लैट हो गए। पहले एक कोने में होता था घर में, बैतुल खला सारे वही इस्तेमाल करते थे, दो हो जाते थे, एक अगले हिस्से में एक पिछले हिस्से में हो जाता था, कैसे ना। अब तो हमने उस फैमिली के लिए जहां अपना बेड बनाते हैं उसके भी साथ बेड बनाते हैं और अपने बेड को कम सजाते हैं, उस फैमिली के बेड को बड़ा सजाते हैं। मुझे एक कहने लगी फैमिली, उन्होंने कहा मेरी बेटी की ख्वाहिश है अभी मेरी शादी वहीं करना जहां का किचन बहुत अच्छा हो, टॉयलेट बहुत अच्छा। ये दो ही चीजें घर में होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की। ये दो ही चीजें घर में होती, एक तरफ से खाया दूसरे में निकाला, ये दो ही चीजें तो होती है। अभी मेरा वो मुझे वैसी शादी करना जहां जहां ये दो चीजें हो और दो चीजें बेहतरीन हो, अभी मेरी शादी वहां करना। और जो खर्चा बेडरूम पे नहीं होता वो खर्चा उस पे हो जाता है टॉयलेट पे। यानी उनका घर बहुत अच्छा बनाते हैं, अपना घर थोड़ा सा कम बना लेते हैं, अपना घर पे खर्चा करते नहीं है, सारा खर्चा उन्हीं के घर पे करते हैं और वो खुश होते हैं, वो जश्न मनाते हैं, वो कहते हैं जिंदाबाद। और फिर रोज डसे जाते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा, मैंने एक दिन फैसला किया, या अल्लाह ये जो खोबस और ख्वाहिश रहते हैं मैं इनको देखना चाहता हूँ, मुझे दिखा दे, देखना चाहता हूँ। बाज बंदे अड़ जाते हैं। उसने कहा, मूसा बली ने कहा, वो लियारी का कराची का जो बलोच है, वो कौन सा बलोच, मकरानी बलोच, वो बेचारे मजदूर लोग होते हैं, वो कहने लगे अपनी सादा जुबान में ना अदब का पता ना एहतराम का पता, जैसे वो मूसा अलैहि सलाम का चरवाहा था, अल्लाह से बैठा बातें कर रहा था, कोई अदब आदाब नहीं। वो मकरानी कहने लगा, मूसा बली ने अल्लाह से कहा, अरे अल्लाह हमें अपना जलवा तो दिखा। मूसा बली ने कहा अल्लाह से, अल्लाह कहने लगा, अरे जा तू हमारा जलवा देखेगा। मूसा बली अड़ गए। अल्लाह ने जो जलवा दिखाया, मूसा बली कल्टी हो गए। मूसा बली कल्टी हो गए। एक बंदा कहने लगा, मैं अड़ गया, मैं कह मौला मुझे ये फैमिली दिखा। और मैंने रात को सोते हुए कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया, या अलीम अल्लमनी या खबीर अखबिरनी। और ये मैं वजीफा जो बता रहा हूँ, दुनिया की हर चीज देख सकते हैं आप इस वजीफे से, फरिश्ते, जन्नत, जिन्नात, दोजख, कब्र का निजाम, जाग जाओ भाई, हर चीज। अच्छा, फ्यूचर, हाल, माजी, मुस्तकबिल, हर चीज अजीब और गरीब है। ये दुआ ही अनोखी है, थोड़ी सी मेहनत कर ले कोई बंदा, मेहनत थोड़ी सी कर ले, जब उसमें इसके ऐसे पर्दा खुलता है ना, खिड़की ऐसे खुलती है, एकदम ऐसे अजीब दुनिया नजर आती है। तो मुझे एक बंदा कहने लगा कि मैंने कहा, या अल्लाह इस फैमिली को मैंने देखना ही देखना है, तू सच्चा, तेरा हबीब सच्चा। बोला, इब्राहिम ने भी कहा था, अल्लाह सारी बात सच्ची है, कुछ हकीकत तो दिखा दे। कौन से जरा वाकिफ है? हाँ, अरिनी कैफ तुहयिल मौत, मार मरने के बाद तो जिंदा करेगा, ठीक है, मुझे यकीन है। पर जरा कोई अगर यकीन होता है कोई देख के, फिर कहानी और हो जाती है। बोला, यकीन है, तू सच्चा, तेरा हबीब सच्चा, मुझे ये फैमिली को देखना है। मैंने कहने लगा कि ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, या अली मुअल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, या अली मुअल्लिमनी, इल्म तो सारा तेरे पास है, कुछ मुझे भी दे दे तेरी मेहरबानी। या खबीर अखबिरनी, सारी खबरें मौला तेरे पास है, अव्वल से लेकर आखिर तक मुझे भी दे दे। या वहाब हबली, वाला तेरे पास सारी अताएं और अताओं में से मुझे भी अता कर दे। और दुनिया मिन इसरार दुनिया, दुनिया के इसरार, दुनिया के भेद, दुनिया के खुफिया चीजें, दुनिया के छुपी हुई चीजें, मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। कई लोगों ने तो खजाने निकाल लिए इस वजीफे से। हाँ, कई लोगों को पता चल गया नहीं है, अक्सर खजाने नहीं होते, ये भी बता दो। दो चीजों पे लोग ज्यादा लुटते हैं मेरे पास जो केस आते हैं, जरा संभल के बैठना आज सुन लेना, एक खजाने के नाम पे, एक सोना बनाने के नाम पे। एक कि आपके घर में खजाना है, आधा तेरा होगा आधा मेरा होगा, मैं निकाल दूंगा। अब जो उस बंदे को इस नाम पे लूटना और चूसना शुरू किया, वो था पहले ही बेचारा सफेद दौलतमंद आदमी होता तो उसको क्या जरूरत है खजाना होगा, मेरे पास बड़े खजाने हैं, जॉब में काम कर। था सफेद पोश आदमी, उसने घर बेचा सब कुछ बेचा। मुझे एक बंदा पिंडी में मिला, मैं इस्लामाबाद में एफटेन में 6 साल क्लिनिक किया, जगह ज्यादा हो गई यानी बंदे ज्यादा हो गए। फिर कुछ अरसा मैंने रावलपिंडी में, वहां एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा घर की फ्रिज बिक गई है, वॉशिंग मशीन बिक गई है, खजाना नहीं निकला। वरना कहते हैं और पैसे लिया, मुकलात को देना है, उनको खून देना है, उनको गोश्त देना है, आगे बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमें कुछ दो निकालेंगे। कहने लगे जब मैं थक जाता, कहता तू बेवकूफ है, अभी सिर्फ 10% बाकी रह गया, अड़ गया है पागल, 90% तो कर लिया तूने। कह रहे 10% के नाम पे मेरा सब कुछ बिक गया है, मेरे घर की रोटी नहीं है, और खजाना होता तो निकलता। कहने लगे 20-20 फुट घर में हमने खुदाइयां कर ली है, कहते खजाना आगे सुरक गया है, आगे सुरक गया। एक खजाने के चक्करों में न पड़ना और एक सोना बनाने के चक्करों में न पड़ना। सोना बनाने का नुस्खा लेना है तो मैं अभी सोना बनाने के 3 चीजें बता देता हूं, उनको मिला लें सोना बन जाएगा, ना बने मेरी बात करें। 3 जुज हैं सारे, ज्यादा से ज्यादा 4 हो जाएंगे। 4 चीजें हैं, हर्बल परमल से पत्ती। मैं वजात करता हूं, हर्बल परमल, हर्बल बूटी होती है, एक नाम सुना होगा किसी ने, है सही है, हर्बल परमल से पत्ती, धड़ी तांबे ते रत्ती, बस धड़ी कहते हैं 5 किलो को, एक धड़ी नहीं कहते, पुराना कहते थे धड़ी कहते ना, धड़ी तांबे पे रत्ती, बस नुस्खा तैयार। 1 रत्ती डालो, 1 धड़ी तांबा सोना, ये नुस्खा सारा का सारा, ऐसी दीवाने वाले कर रहे हैं। हर्बल परमल से पत्ती, बात कर रहा था उस बंदे की, किसकी, जिन्हें मानो मेरे फैमिली देखनी है, अड़ गया मुसा बली, अड़ गया और कल्टी हो गया। और बात मैं अगली कर रहा था कि 2 चीजों का ख्याल करना, एक खजाना निकालने वाले और एक, और तीसरे केस मेरे पास बहुत सुनारों के आते हैं, सुनार बेचारे लुटते हैं कि जी खजाना निकला है चुप करके। अभी भी हमारा एक दोस्त 10 लाख में लुटा है, पुराने सिक्के पुरानी चीजें लाएंगे, ये दिखाएंगे, सुनार के पास गारंटी है, सुनार परखेगा, सोना ही सोना होगा, वो तो सोना होगा, अगली सारी कहानी तांबा होगा, उसके अंदर कोई ऐसा उनके पास फन है, ऐसे फनकार है कि सोना है, और सोना अगर है 20 रुपए तोला तो कहेगा 5 रुपए तोला दूंगा, पर कहना किसी नहीं, हुकूमत को पता चल गया तो खजाना बड़े पुराने खंडर से निकला है। यकीन जानिए सोना बनाने के लिए आप ऐसे ही दीवाने हैं, सोना सोना, ये 3-4 चीजें हैं, ये कर लें सोना बनाएंगे। और ये जड़ी बूटियां पाकिस्तान में मिल जाती हैं, मैं बता देता हूं कहां मिलती है, यही आपको अभी मिल जाएंगी। हाँ चलो हम सोने के देख लेते हैं। सोने में ना 4 चीजें पड़ती हैं, 1 सीन, 1 वाव, 1 नून, 1 अलिफ। सोना, सो देखो कोई सो तो नहीं रहा, मैया सो बड़ी सो रही होगी, उन्हें पता है तारे कोई गैबदान तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से तो माइयों की मिन्नत करके उनके टेके निकलवाई है। सो हरमल परमल सेवती धड़ी तांबे ते रत्ती, और वैसे सोने में सीन है, वाव है, नून है और अलिफ है। सो ना, सो ना, बैठ के अल्लाह से खजाने ले ले। सोना क्या है, सोना तो नस्लों में खत्म हो जाता है, ऐसे जब देने पे आएगा तो तेरी नस्लें वाला बाल हो जाएंगे। तू सोने की बात करता है, ये सोना है। वो कहते हैं हरमल तो मिल गई, से पत्री मिल गई, परमल कहाँ है? कह रहे हैं परमल मिलेगी हमालिया की चोटी पे। अम्मा मर गई किसी के जाएगा, कहने लगा कि मेरे पास एक नुस्खा है, उसमें शेर के कान की मैल और उसकी मूछे पड़ती हैं। अब बताओ, शेर के कान की, शेर ना हुई बकरी हुई, शेर के कान की मैल, कोई मसला नहीं है, ऐसे आसान सा नुस्खा है। और शेर को कहो कान दिखा, शेर कहेगा ओ, ऐसे करे ना, थोड़ी सी मैल निकाल लो उसमें से, और शेर की होती ही मूछे हैं। शेर को दो तीन मूछे तो कर, शेर ने ऐसे मुंह कर दिया, आपने उसको ऐसे पकड़ के थोड़ी सी मूछ खेल ली, उन्हें कहा कि इंसान दिया था, उन्हें कहा बद दवाई तैयार है, बंदा ही वापस नहीं आएगा। बंदा ही वापस नहीं आएगा, शेर साहब उसको जन्नत में पहुंचा देंगे। मैंने कहा मेरे पास भी एक नुस्खा है बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा जाके ना मगरमच्छ का पिता ले आ, मगर और उसका पिता, कैसे जी बात है। उम्मत को ऐसी राय बताना कि उम्मत कर ही ना सके। जो उम्मत फर्ज नमाजों से चली गई, जो उम्मत फराइज और हकूक से चली गई, जो उम्मत फराइज को जमा कर बैठी, सिर्फ 3% नमाजी हैं और रमजान में 10 से 12 से 15% नमाजी होते हैं और मस्जिदें भर जाती हैं, जो उम्मत यहां तक चली गई, इतनी कमजोरी में चली गई, इतने जोफ में, इतनी वीकनेस में चली गई उम्मत, कह लगे मैं रात को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, या अली मुअल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, कभी एक तस्बीह, कभी दो तस्बीह, कभी 3 तस्बीह, कभी 8 तस्बीह, कभी 1000, और मैंने रोज पढ़ना शुरू कर दिया, 1 तस्बीह से कम मैंने कभी नहीं पढ़ा, और कभी कभी 1 तस्बीह पढ़ लेता था, और कहने लगे मैं तस्बीह पढ़ता रहा पढ़ता रहा। वो 40 दिन में उन्होंने कहा कि तुझे सब कुछ नजर आ जाएगा, 40 दिन गुजर गए, मुझे तो कोई नजर ही कुछ ना आया, नजर ही कुछ ना आया। अब वो कहने लगे हैरान कौन बात है कि ये क्या है, उनके पास गए, उन्होंने कहा जी कुछ नजर नहीं आया, उसने कहा तेरे करने में कमी है, हमारे देने में कमी नहीं, जरा और पढ़, और हिम्मत करके और पढ़, मेहनत करके और पढ़। कहने लगे मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और दूसरे 40 दिन अभी नहीं ही गुजरे थे, मैंने एक ख्वाब देखा, और अजीब ख्वाब देखा। वह साहब कहने लगे ख्वाब ये देखा कि मैं, मुझे हाजत हुई है और मैं बैतुलखला में गया हूँ, बैतुलखला में गया हूँ तो एक तरफ चारपाई बिछी हुई है, एक तरफ अलमारी रखी हुई है, एक तरफ चूल्हा जल रहा है, एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं, और एक मुर्गी का बच्चा है, उसको उठा के वह उधर फेंकता है, वह उधर फेंकता है, वह चू चू करता है, 3-4-5 बच्चे हैं, माई है, सर खुजाती है, लकड़ियां जलाती है, खाना पका रहे हैं, देखा तो बाप है सामने, उसने जो है वो कुछ तेल निकाल रहा है किसी चीज का। इस तरह की कहानी देखी मैं कि करीम अल्लाह, मेरा बैतुल खला कोई इतना एकड़ों में फैल गया है, ये क्या है, ये कौन है, और माई का घर है, बच्चा कोई रोता है तंग करता है तो माई ने उठ के यूं उससे पिटाई कर दी, उसकी तबीयत साफ कर दी, और फिर आगे जो है उसने खाना पकाना शुरू कर दिया, और एक जिंदगी है उनकी, उनके दिन हैं, उनकी रात हैं, उनकी सुबह हैं, उनकी शाम हैं, वहीं रह रहे। कहने लगे मैंने कहा भाई तुम यहां से निकलो, ये मेरा बैतुल खला है। कहने लगे वो देख के कहने लगे ये तेरा नहीं हमारा घर है, तेरा घर वो है, कह रहे तेरे कमरे की तरफ का वो तेरा घर है, ये हमारा घर है, तूने यहां थोड़ी देर रहना है तो रह, बाकी घर हमारा है, हम नहीं निकलते। कहने लगे वही ख्वाब में मुझे ख्याल आया, अब ये सुनने की बात है, ख्वाब में मुझे ख्याल आया कि बैतुल खला में वो जिन्नियां भी रहती हैं, जिन मर्द जिन औरतें भी रहती हैं, क्यों ना दुआ पढ़ी जाए। कल मैंने एक पल में बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसे वल खबाइस ये पढ़ी, और ये पढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द एकदम में से पर्दा आया, और पर्दे में मैं उन्हें देख रहा था, वो मुझे नहीं देख रहे थे, और एक दूसरे से कह रहे थे ये बंदा ये दुआ पढ़ के एक पल में हमारी नजरों से ओझल हो गया है, कितना समझदार आदमी है, कितना अकलमंद आदमी है, अब हम इसको देख नहीं सकते, अगर देखते ना ये याद रखता हम इसके साथ करते क्या, फिर वो गंदी सारी बातें, वो गंदे सारे ऐब बयान करने लगे, हम ये करते इसके साथ, ये इसको इस काम पे लगाते, इस बुराई पे लगाते, इस मुसीबत पे लगाते और इस ऐप पे लगाते, फिर देख तो सही हम करते क्या हैं, फिर क्या करें। और मई को आके ना मर्द ने मारना शुरू कर दिया, तूने क्यों कहा था ये घर हमारा है, तू चुप करके बैठे रहती, आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, उसने टिका के उसकी कुटाई की मई की। कह लगे ये झगड़ा मैं देखता रहा देखता रहा, लेकिन मौला हम तो समझे तो हमारा घर है, हमने तो इस कमरे को क्वार्टर बनाया हुआ है, और ये तो क्वार्टर की सर्वेंट क्वार्टर लगता है कोई, ये तो फैमिली रह रही है एक बहुत बड़ी। कहने लगे मैंने कहा आंख खुली ना, मैंने कहा या अल्लाह तू सच्चा और तेरे नाम सच्चे, मैंने सब कुछ देख लिया आंखों से कि वाकई वहां फैमिली रहती है बैतुल खला में। आप फिर लोगों के सामने नंगे होंगे हैं? अब तक जो होते रहे उसका क्या मना, अब तक जो होते रहे उसका क्या बनेगा, उसका इजाला कैसे करें, उसका भी सोचे उसका इजाला कैसे करें। हत्ता के नौमौलूद बच्चा, शीरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा, उस दूध पीते बच्चे को भी, दूध पीते बच्चे को भी, अगर हम दूध पीते बच्चे को बैतुल खला में ले जाएं, माँ उसकी तरफ से पढ़े, माँ उसकी तरफ से पढ़े। मेरे बच्चे को माशाल्लाह बैतुल खला की दुआ याद हो गई है, सवा दो साल का है, उसकी माँ उसको ले जाके पढ़ती है ना, पढ़ती है, वो मेरे को बहुत पढ़ना है, उसकी ऑटोमेटिक सुई जो है ना वो शुरू हो जाती है, रोज रोज हमारी उसके साथ एक कहानी इलादा होती है, वो होती है दिल वाली कहानी। मैं उसको कहता हूँ आओ मैं सोने लगा हूँ, जल्दी आओ मैं दिल वाली कहानी सुन लो, वो आके मेरे ऊपर लेट जाता है, फिर मैं उसे कहता हूँ चिड़िया सो गई है, चिड़िया ने कहा था मैंने कलमा पढ़ा है, चिड़िया नहीं पहले पढ़ेगी, पहले ओन पढ़ेगा, जल्दी जल्दी चिड़िया को कलमा सुनाओ, ला इलाहा, फिर ला इलाहा कहा वो सारा कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, कह रहे कौवा कहता है मैंने या हाफिज़ो या सलाम पढ़ लिया, मैंने कहा नहीं ओन पहले पढ़ेगा, फिर या हाफिज़ो या सलाम, मैंने कहा कबूतर कहता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अहया, कबूतर कहते हैं मैं पढ़ूंगा, कबूतर से पहले ओन पढ़ेगा, ओन पढ़ेगा कबूतर, पढ़ लो कबूतर दुआ पढ़ लो, दुआ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा अब जाके ना आप चुप करके बैठ जाओ, कह रहे नहीं मैं चिड़िया को जाके मारूंगा कि चिड़िया ने दुआ क्यों पढ़ी है, पहले मैं पढ़ूंगा, चिड़िया और कौवे और तोते और मैंने से दुआएं कबूल, दुआएं याद हो जाती हैं, दुआएं याद हो जाती। ये जिंदगी का एक सबक है मेरे आपके लिए कि हमारे घर में फैमिली रहती है और जिन्नात की फैमिली रहती है, और मेरे देखने वाले आका ने फरमा दिया आप भी देखना चाहें तो ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें किसी न किसी शक्ल में, आपको जरूर नजर आएगी। हकीकत है, मेरे अल्लाह पाक पर्दे किसने दिए? अल्लाह ने दिए ना। मेरी और आपके जिन्नात पर्दे किसने रखे हैं? अल्लाह ने रखे हैं। और अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे। और ये जो मैंने तीन लफ्ज बताए हैं, अल मालिको, अल कुद्दूसो, अस्सलाम, और ये तीन लफ्ज जो मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसे अजीब और गरीब लफ्ज हैं, ये उन उन शरारतों की शरारतों का एक बेहतरीन इलाज है। जो बंदा इसको सुबह शाम या हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लेगा, या सुबह शाम 11 बार पढ़ लेगा, उन शरारतियों का एक बेहतरीन इलाज है कि अल्लाह पाक उसकी शर्मगाह जेरे नाफ के नीचे के शर से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं, और जेरे नाफ के नीचे के फसाद से अल्लाह उसको महफूज फरमाते हैं, और जेरे नाफ के अगर कोई सी शर में, किसी गुनाह में, किसी आजमाइश इब्तला में वो मुब्तला हो भी गया है, तो मेरा करीम आका गैब के खजाने से उसको तहफ्फुज़ फराहम करते हैं, उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और अगर कोई नुकसान, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, हत्ता के जेरे नाफ औरतों की बीमारियां, मर्दों की बीमारियों का यह खुद बेहतरीन इलाज है। अल मालिको, अल कुद्दूस, अस्सलाम, खुद बेहतरीन इलाज है। अच्छा, दूसरा दरवाजा जो इस फैमिली का हमने बंद करना है, दूसरा दरवाजा इस फैमिली का जो हमने बंद करना है, वो एक और अंदाज से करना है। चलो, हमने इधर से तो दरवाजा बंद किया कि हमारे और इनके दरमियान में पर्दा आ गया, तो ये खाना कैसे खाएंगे? इनको भूखा रखो, और भूखा रखने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत लाजिम करार दे दें। और बिलफर्ज अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह अगर भूल भी गए हो, तो फिर एक और तरीका है, वो ये है कि इनके साथ एक और मामला करें, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लें, आते ही बाहर आ जाएंगे इनकी। इनको तंग करें। एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक साहब के पास ना हाथ से हवा देने वाला पंखा नहीं होता, पंखा, वो पंखा था उसके पास, सफर कर रहे थे, इकोनॉमी का सफर था, तो जहां ट्रेन रुक जाती आधा आधा घंटा फिर उसी का होता था, ऊपर के पंखे तो बिल्कुल फारिग थे, वो नहीं चल रहे थे, खराब थे शायद। तो उनका बेटा क्या करता, मां से पंखा लेता, पिछली सीट में एक बूढ़ी माई बैठी थी, उसका पिछला हिस्सा उसको चुभोता, ऐसे चुभोता, ऐसे चुभो के खुद अम्मा को दे देता, अम्मा पंखा लगाने, ऐसे करती। भाई इधर देखती, फिर देखती, शायद को कील आए, लेकिन कील भी नहीं है, मैं दूर बैठा ये देख रहा था। फिर आता, फिर अम्मा से पंखा लेता, फिर उसको सीट की पिछली सीट है ना, यूं ऐसे चुभोता। आखिरकार माई ने ना यूं करके आप बैठ गई, उसने कहा लगता है कोई बंदा है, माई यूं करके बैठ गए, यूं करके बैठी ना, कुछ देर में स्टेशन आया, ट्रेन आके स्टेशन पे रुकी, वो बाहर से निकला, बाहर से आया, खिड़की में से, दूसरी खिड़की में से यूं हाथ निकाल के पंखे को यूं चुभाया, तो माई ने यूं देखा, और माई देखा बंदा नहीं था। अच्छा, साथ एक और बंदा बैठा था, और कहने लगे अम्मा क्या है, वो भी देख रहा था, कहने लगे ये है अम्मा कोई हवाई मखलूक, कहकर लगता था मैनू भी ऐसी है। कि लगता था मुझे भी है कोई हवाई मखलूक लगती है, कोई नजर भी नहीं आता, पर कोई ऐसे है कि कोई चीज यहां से चुभती है। क्या ख्याल है, इस फैमिली को ऐसे ना सताए। वो फैमिली को हवाई मखलूक कहे, कोई हवाई मखलूक है ये, वो कहे कि इस घर के अंदर न खाना न सोना, भूखा छोड़ दिया, भूखा मार दिया, अगर गलती से उन्होंने खा भी लिया तो मेरे आका करीम खाना तनावल फरमा रहे थे, एक साहब आए साथ खाने में शामिल हो गए, और उन्होंने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, थोड़ी देर के बाद हजूर मुस्करा दिए, تو غلاموں نے پوچھا کہ آقا آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ آیا تھا یہ اور اس نے کچھ پڑھا نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آ گیا تو اس نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھا، جب یہ پڑھا تو وہ جو شیطان ہمارے ساتھ بیٹھا کھا رہا تھا ایک دم اس کو اتنے زور کی الٹی آئی کہ اس کی آنتیں بھی باہر آ گئیں، اس بات میں مجھے ہنسی آئی، ان کو الٹیاں نہ کروائیں۔ اچھا تیسرا ایک اور راستہ بھی ان کا ہم نے بند کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ گھر میں جاتے ہی السلام علیکم کہے، کیا کہے؟ السلام علیکم گھر میں کہے۔ اچھا ویسے ہے یہ شرم کی بات کہ میں عورتوں کو سلام کروں؟ ہے شرم کی بات کہ میں عورتوں کو سلام کروں؟ میں عورتوں کو سلام کروں؟ عورتوں کو تو مجھے سلام کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کی تین بیویاں تھیں، فوت ہو گئی بڑھاپے میں، ان کی اب تو اولاد بھی فوت ہو گئی، دو بیٹے فوت ہو گئے، اور میں چھوٹا چھوٹا ان کے گھر جاتا تھا، وہ دفتر سے جب واپس آتے تھے تو ان کی تینوں بیویاں انتظار ہوتی تھیں کہ میاں صاحب کو، ان کو میاں صاحب کہتے تھے، کہ میاں صاحب کو پہلے سلام کون کرے؟ ایک سب سے بوڑھی تھی، ایک اس کے بعد ایک نئی بیوی تھی، نئی بیوی اکثر بعد میں سلام کرتی کیونکہ وہ لاڈلی تھی، جو سب سے پہلی تھی اس نے چونکہ روٹی روزی کا سلسلہ جاری رکھوانا تھا تو وہ سب سے پہلے سلام کرتی تھی، سب سے پہلے وہ سلام کرتی تھی۔ یہ عجیب توہین ہے کہ مرد سلام کریں، عورت کے ذمے وہ سلام کریں، مرد نے سلام کریں۔ میرے مدینے والے نے فرمایا تو بچوں کو سلام کر، میرے آقا نے فرمایا تو کمزوروں کو سلام کر، اور بتاؤ۔ فرمایا صحابہ کرام بیٹھے تھے آقا کی بارگاہ میں، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دو آدمی ہو تو ان میں سے پسندیدہ شخص کون ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جو سلام میں پہل کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دونوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی جو سلام میں۔ اور ایک اور بات اس سے بھی عجیب ہے، آقا نے فرمایا مفہوم ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کرنے والے پہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 99 پہل کرنے والے پہ اور 1 جواب دینے والے پہ، 99 99 99۔ جس گھر میں سلام ہوتا ہے اس فیملی کا اس گھر میں نعت کا بند، منہ ہڑتال تو پہلے کرا دی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، الحمدللہ کھانے کے بعد پڑھ کے، اور سلام کرنے سے اس گھر کا۔ اچھا یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، بچوں کو لڑاتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، دلوں کا توڑ پیدا کرتے ہیں، دلوں کے جوڑ کو ختم کرتے ہیں، اور غیب کے نظام جو ہمیں نظر نہیں آتا ان کے اندر جو ہے وہ ہر وقت پریشانیاں مشکلات، یہ ظالم اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ جس گھر میں سلام ہوتا ہے بیماریاں نہیں آتی، جس گھر میں سلام ہوتا ہے مصیبتیں نہیں آتی، جس گھر میں سلام ہوتا ہے راحتیں ملتی ہیں، جس گھر میں سلام ہوتا ہے پیار بڑھتا ہے، جس گھر میں سلام ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے، جس گھر میں سلام ہوتا ہے چاہت بڑھتی ہے، جس گھر میں سلام ہوتا ہے فرمانبرداری آتی ہے، جس گھر میں سلام ہوتا ہے اس گھر کے میں موجود پیٹ کے اندر بچہ بھی ڈیسنٹ ہو جاتا ہے، حیرت انگیز طور پہ فرما بردار، با ادب، با سلیقہ اور حیرت انگیز سمجھدار ہوتا ہے، با صلاحیت بھی ہوتا ہے اور صالحیت نیک بھی ہوتا ہے سلام کی برکت سے۔ جس گھر کے اندر سلام ہوتا ہے، ایک چیز ہم نے ان کی بند کرنی ہے، میری آقا نے فرما دیا بس ختم، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ جس گھر میں سلام کیا جاتا ہے تو یہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں نہ اب اس گھر میں کھانا ہے اور نہ سونا ہے، نہ رہائش ہے نہ طعام ہے، उस घर में वो रास्ते बंद हो जाते हैं और सलाम की वजह से वो सारा मसला हल हो जाता है, सलाम की वजह से। ये वो खिड़कियां हैं जो हमने बंद नहीं करनी। एक खिड़की बैतुल खला की दुआ की बताई, एक खाने की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह वअला बरकतिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, और एक खिड़की मैंने आपकी खिदमत में बताई अस्सलामु अलैकुम सलाम की। ये खिड़कियां हैं, हमने बंद नहीं करनी वरना दम घुट जाएगा, जिंदगी मायूस हो जाएगी, हालात बदतर हो जाएंगे, मुआशरे में नफरतें फैल जाएंगी, बेहयाई उरूज पे चली जाएगी, उरूज पे चली जाएगी। मेरे पास तवायफें आती हैं, मैं उनको अक्सर कहता हूँ 1,25,000 दफा बैतुल खला की दुआ पढ़ो। जो भी पढ़ा आज तक मुझे याद नहीं, जिसने भी पढ़ा रब ने उसके दिल की दुनिया बदली, रब ने उसके मन की दुनिया बदली, रब ने उसके चाहतों की दुनिया बदली, और रब ने गैर से उसको अपना ताल्लुक, अपने हबीब का ताल्लुक। और कितनी ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने फिर गैब से खूबसूरत हस्तियों के दीदार भी करवाए इस दुआ की बरकत से। एक दरवेश थे सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, मामू कांजन के अल्लाह वाले थे, वो मिलों चलते थे, बहुत चलते थे, उनके साथ चलने वाले बंदे थक जाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा, हजरत आप इतना चलते हैं, इस चलने का राज क्या है, इस चलने का राज? और तो उन्होंने फरमाया कि असल में मैं दुआ पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हालांकि ये दुआ तो घर से निकलने की है, कोई कहे ना कि ये कहाँ साबित है, मैंने सूफी साहब से पूछते हैं, सूफी साहब ये कहाँ से साबित है, ये तो घर से निकलने की दुआएं। वो फरमाते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, आप भी पढ़ो, आप भी नहीं थकोगे, मीलों चलोगे। बस ये दुआ पढ़ते जाओ, थकेगो नहीं। क्यों? अल्लाह के तवक्कल पे, अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह की ताकत और कुव्वत पे। बस जिसके साथ अल्लाह हो गया, बस उसको फिर और किसी चीज की परेशानी की जरूरत ही क्या है, और उसका कोई मसला कौन सा? फिर उसको किसी तकलीफ की क्या जरूरत है? अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आज के बाद हमें सोचना होगा। हमने समझा कि खुशहाल बनाने के लिए बहुत बड़ा बंगला हो, वो मिल गया खुशहाल बनाने के लिए, और दिल को खुश रखने के लिए उसमें मछलियां हो जो मर्तबान के अंदर हो, शीशे के अंदर हो बड़ी बड़ी, वो भी आ गई। हमने समझा कि खुशियां और खुशहाल बनाने के लिए हमारे फिर एक खूबसूरत लॉन हो, बाग हो, सब्जा हो, वो भी आ गए। फिर खुशियां लाने के लिए बेटे भी आ गए, खुशियां लाने के लिए बेटियां भी आ गई, सवारियां भी आ गई, फिर दिल को खुशी तो ना हुई। मैं पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे गमजदा इंसान कौन है, दुनिया के गमों के मारे हुए इंसान कौन है। लिखा हुआ था दुनिया के गमों के मारे इंसान दो हैं, एक दुनिया के सबसे आखिरी दौलतमंद, एक दुनिया से सबसे आखिरी शोहरतमंद। दुनिया के आखिरी दौलतमंद जिनके पास सारी दुनिया की दौलत है, उनके इंटरव्यू उसने इकट्ठे किए थे उस साहब ने जिसने ये लिखा था कि दुनिया के सबसे गमजदा लोग, सबसे मुश्किलात के हारे मारे लोग ये हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में शोहरत की इंतहा को पहुंचने वाली जो खातून है वो लता है, और उसने लिखा है कि मेरे पास मनो किलों के हिसाब से सोना है, दौलत है, शोहरत है, पर मैं जिंदगी के गमों के साथ जी रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे चिता नसीब हो जाए। दुनिया की दौलत और शोहरत सारी चीजें मिल गई, पर जिंदगी का चैन सुकून न मिला और जिंदगी का सरूर न मिला। वो तो अला बिज़िक्रिल्लाह, वो तो मदीने वाले के नाम और अल्लाह के कलाम से, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा तो कोई मंजर ही नहीं है। मैं रात आपसे नहीं अर्ज कर रहा था, अगर चैन और सुकून होता और बहुत ज्यादा होता तो यूरोप, अमेरिका और मगरब में खुदकुशियां ज्यादा क्यों होती? इज्तमाही खुदकुशियां, आपस में मशवरा करते हैं कि इज्तमाही खुदकुशियां करनी, खुदकुशियां करनी, इज्तमाही खुदकुशियां। और तलाकों की शरह, ट्रायल बेस पे आपस में जोड़े मिलते हैं, कुछ अरसा एक दूसरे के साथ रह के देखते हैं, गुजारा मुजारा कीगी तो कीगी, वरना फिर तू उधर में उधर। ये जिंदगियां टूट के घराने, माँ ने मुकदमा किया कि 5 घंटे जो है कुत्ते को देता है मेरा बेटा, अदालत में मुकदमा किया और मुझे पूछता नहीं, मैं सिसक रही होती हूँ। बेटा कहने लगा मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं, मुझे अख्तियार है, मैं कुत्ते को तवज्जो दूं ना दूं। अदालत ने बेटे के हक में केस दिया, जवाब दिया, और अदालत ने बेटे का साथ दिया, माँ का साथ नहीं दिया कि 18 साल का बेटा है, अब इसको हक है, माँ तो इसको पूछ नहीं सकती। वो तो मदीने वाले ने कहा था कि अम्मा को देख ऐसे जरा गौर से, हाँ देखा, क्या मिला? उन्होंने कहा सवाब मिला। अब्बा को देख क्या मिला? कहा सवाब मिला। कहा वालिदैन को देखने से क्या मिला? मकबूल हज उमरे का सवाब मिल गया। और मैंने एक दफा मोहब्बत की नजर से बीवी को देखने का सवाब बताया था, किसी को याद है? मोहब्बत की नजर से बीवी को देखने का सवाब बताया था, कोई है बंदा जिसको याद हो? हाँ जी बताए। मोहब्बत की नजर से बीवी को देखने का सवाब भी मैंने बताया था। हाँ बताए हैं? हाँ? वो कहते हैं वो पांव दबाने के लिए 7 तोला सोना जो है वो पांव दबाने की है, बीवी के नहीं, बीवी शोहर के दबाए तो। और बीवी को मोहब्बत की नजर से देखने से क्या मिलता है? आपको मैंने बताया हुआ है, कोई बताए मुझे। नूरानी आंखें, हाँ जी आप, नूर का एक जरा मिलता है, आप बोलो भाई, नूर की एक शम्मा दिल में जलती है, एक नजर अगर बीवी को मोहब्बत की नजर से देखे, एक नजर बीवी को मोहब्बत की नजर से देखे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाक्या सुनाया करता हूँ। एक माई बूढ़ी आई, फातिमा उनकी बीवी बिनते अब्दुल मलिक बादशाह की बेटी थी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन अब्दुल अजीज की बात है, गारा बना रहे थे घर में कुएं से पानी निकाल निकाल के। मई बूढ़ी आई, अपनी बिपता सुनाने लगी, गम की कहानी थी, कोई उसके घर के हालात थे। मई बड़ी पुरानी थी, मई कहने लगी, थोड़ी देर के बाद बातें करते करते मई कहने लगी, ये जो तेरा गुलाम है ना गारा बना रहा है, इससे बच के रहना, इसकी नजर पाक नहीं है। मैं भी बड़ी तजर्बाकार हूं, बढ़िया उड़दियां फसदियां देखे, ये जो तेरा गुलाम है ना इसे जरा मई जरा बच के रहना, तो बादशाह शादी है, बादशाह है, शहजादी है, मलका है, अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। उन्हें क्या बात है? कहने लगे जब गारा बनाते देखता है तुझे आशकाना नजरों से ऐसे करके देखता है, फिर बंगला करता है। कहने लगा अम्मा भोली यही मेरा शोहर है। चलो अम्मा को देखने से तो ये सवाब मिला, और बीवी को बब्बर शेर की निगाहों से देखने से सवाब मिलता है। उसने कहा पहली दफा जाना ना मुलाकात करके 3-4 बीवी को थप्पड़ मार देना, मर्द है पे सारी जिंदगी रोब रहेगा। हाय हाय क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा। मैं उस दिन लाहौर के एक कोने में गया एक बंदे के पास, जरा मेरी तरफ देखना, शायद 2 महीने से वो नहीं नहाया था, उसका हुलिया, उसके कपड़े, उसका चेहरा बता रहा था, उसने सारी जिंदगी औलाद को मारा था, आज औलाद मारती है, 15 पे पुलिस आती है। और बंदा साथ जो बैठा था मुझे लेकर गया था, मुझे लेकर गया था, ओहो बंदा कहने लगा मैंने कई दफा खुद आके छुड़वाया है, औलाद पे सख्ती की इंतहा, मार 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 के औलाद को सुअर बना दिया, आज वही औलाद है जो बाप को इतना मारती है कि महल्ले वाले को पुलिस बुलानी पड़ती है, और बाप जिंदगी के अब मेरे सामने भी मायूसी की बातें कर रहा था कि बस मेरा बस कुछ नहीं रहा, 65 साल का आदमी हूँ बुढ़ापे में, घर था एक तंग तारीक, बेटे थे और उसकी जिंदगी थी और मुझे जिंदगी में महसूस हुआ औलाद को मारता था और बीवी को नफरत देता था। आज बीवी की हो गई है यूनियन, यो हाँ औलाद बड़ी, बीवी की यूनियन बढ़ गई। बीवी की यूनियन जब बढ़ी तो बीवी ने कहा कि हाँ हमारी जिंदगी में सुकून बंगलों से चीजों से अगर अल्लाह ने दी है, बड़ा घर तो खूबसूरत अच्छी बात है, कौन सी नफरत की बात है। अल्लाह ने बड़ी सवारी बड़ा घोड़ा दिया है तो खूबसूरत अच्छी बात है, हलाल राहों से अल्लाह ने अच्छी पोशाक दी है तो और क्या अच्छी बात है। बल्कि मैं एक मशवरा दूंगा पीरों को और मजहबी रहनुमाओं को, अच्छा लिबास पहनना चाहिए। आप कहेंगे ये बात कैसे, जो खास तौर पे मजहबी रहनुमा है उनको अच्छा लिबास पहनना चाहिए। एक दरवेश थे, वो अपने घर से निकल के ना पैमंद लगा हुआ, पुराना पैमंद लगा हुआ लिबास, जगह जगह पैमंद टाकियां लगी हुई, वो पहन के जा रहे थे तो उनकी बीवी ने बुलाया, उन्होंने कहा हजरत आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा बाहर जा रहा हूँ। फरमाया क्यों पहना ये लिबास, कहा सुन्नत है। फरमाया ये सुन्नत घर में पूरी कर लीजिए, बाहर अच्छा लिबास पहन के जाइए, वरना लोग कहेंगे हमारे मुर्शिद के पास कपड़े ही नहीं है, देखो पैमंद लगे। ये खुद लिबास एक सवाल का जरिया बन जाएगा, कभी सवाल हाल से होता है, कभी चाल से होता है, कभी ढाल से होता है, कभी काल से होता है, कभी किसी कैफियतों से सवाल होता है। लोग समझेंगे आपके मुरीद जानिसार अकीदतमंद के बाबा जी के पास पैसे ही नहीं है कपड़े, वो आपके कपड़ों का फिक्र में लग जाएंगे, अच्छा लिबास पहन के जाएंगे तो सवाल के दरवाजे से तो बच जाएंगे, सवाल के दरवाजे से बच जाएंगे। नहीं नहीं, इनके पास माशाल्लाह कुछ कुशादा है, इनको हमारी इनायात की जरूरत नहीं है। अच्छा इनका एक और दरवाजा बंद न करें, इनको पीछे से पंखा मारें, मारें पीछे से पंखा एक बूढ़ी बाइक ना स्टेशन से उतर के इधर से दूसरी खिड़की से फिर पंखा मारा और देखो कि हवाई चीज है इनको ना और जिच करें हम, इन्होंने भी हमें बड़ा परेशान किया था, इनको मदीने वाले की दुआओं से और तंग करें और इनके रास्ते इनके बंद कर दें और तंग कर दें और इनके दिन इनके रात इनकी सुबह शामें बंद कर दें। एक और चीज सुने फिर एक और काम करें हम, बताऊं 6 बिस्मिल्लाह और 5 सूरतें पढ़ लें फिर इनकी जिंदगी देखें, 6 बिस्मिल्लाह और 5 सूरतें पढ़ लें फिर देखेंगे इनके साथ होता क्या है। ये पता है क्या करते हैं, ये बात मुझे एक दरवेश ने भी बताई। एक दरवेश थे मौलाना अब्दुल मजीद साहब बाबुल उलूम के, बड़े दरवेश अल्लाह वाले थे रहमतुल्लाह अलैह, मुझे प्यार करते थे, फोन करके टाइम भी लेते थे और कहते थे कि फलां बादशाह से वजीर आजम से टाइम लेना आसान है, आपसे टाइम लेना मुश्किल है। मैं कहा हुजूर जब फोन आता है जब जिसके बारे में फरमाते हैं मैं टाइम दे देता हूँ। तो एक दफा फरमाया मैं उनके यहाँ गया हुआ था तो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझसे फरमा बिलियां साथ खड़ी थी, मुझसे फरमाने लगे 13 बिलियां हैं, ये बिलियां हैं, ये जिन्नात हैं, ये 13 जिन्नात हैं जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मेरे शागिर्द हैं और मेरी हिफाजत करते हैं। ये मुझसे शेख ने खुद फरमाया। और एक बात अजीब फरमाई, एक बार मेरे घर तशरीफ लाए ऐसी बातों में फरमाई ये जिन्नात जो है ना, ये शरीर जिन्नात जो हमारे घरों में रहते हैं, ये हमारे घर में सफर हजर में हमारे साथ हैं, वहां भी लूटते खाते रहते हैं। लूटते, क्या बात कही उस दरवेश ने, बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत जहां दीदा थे और जिसे कहते हैं ना कि पहुंचे हुए थे, बड़ी कमाल हस्ती थे, ये हमें लूटते खाते रहते हैं। और फिर फरमाया ये जो पांच छह बिस्मिल्लाह पांच सूरतें हैं ना, ये इनके लूटने खाटने से बचाव का तरीका है। ये जाके मुझे ठा करके लगी बात, क्योंकि मेरा मौजू था ना, ये मौजू मेरा था। जैसे लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन किताबों में वो चीज नजर नहीं आती जो मैं ढूंढ के ले आता हूँ, जैसे फजाइल दुरूशी में ढूंढ के ले आया वो चीज। वो कहते हैं हमने भी कई दफा पढ़ी, मैंने कहा तुमने अपनी नजर से पढ़ी, मैंने अपनी नजर से पढ़ी, मेरे मकसद की चीज थी, मैं उसमें ढूंढ के ले आया, मेरा मौजू यही है, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी इस मौजू के ऊपर। आप जैसे प्रदेश में आए हुए हैं, आप कुशादा खाना, बेहतरीन सेहत, फिटनेस, आला जिंदगी और लाजवाब लुकमे और रिहायश और सफर हजर की मुसीबतें तकलीफें परेशानियों से बचना चाहते हैं, पांच सूरतें जरूर याद कर लें। अगर याद नहीं, याद है तो सुभान अल्लाह, नहीं तो जरूर याद कर लें। अब इसमें एक वाक्या सुने। एक सहाबी बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि मेरे पास सामान सफर, खाना पीना, हर चीज थी, हर चीज होती है, लेकिन मैं सफर में सबसे मुश्किल में, सबसे तकलीफों में, सबसे परेशानियों में। इस तरह के हालात बयान किए हुजूर की बारगाह में, तो अर्ज करने लगा कि हुजूर कोई जो है मुझे इसके लिए फरमा दे, मैं क्या करूं, दुआ फरमा दे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सारे मिजाज नबूवत में, मेरे मदीने वाले की सारी सीरत में, सारी किताबों में, आज तक ऐसा कोई एक वाक्या मुझे कोई दिखा दे, मेरे इल्म इतना मेरा वसी नहीं है, मैं भूल भी सकता हूँ कि बंदा आया हो और मेरे मदीने वाले ने क्या किया हो। इधर आए मेरे सामने खड़े हो, मेरे मदीने वाले इसको देखें जरा, इधर आए, और मेरे मदीने वाले ने यूं किया हो, जा कामयाब है। मुझे कोई एक वाक्या दिखा दे, कोई दिखा सकता है, हैं? मैं भूल नहीं सकता हूं, मैं आलिम तो वैसे ही नहीं हूं, अनपढ़ सा आदमी हूं, दो चार उर्दू की किताबें, दो चार इंग्लिश की किताबें वो भूल भाल गया, और उर्दू की किताबें याद है वो उसकी जेर जबर का मुझे पता है, मैं जैसे उर्दू बोलता हूं। कोई एक बंदा, कोई एक वाक्या मुझे आप दिखा दें, ऐसे बंदा आया हो उसको थापड़ा दिया। मुझे हमारे एक बाल टाउन के एक काबिले एहतराम हैं, उनके वालिद साहब कायदे आजम के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर कर्नल इलाही बश मरहूम, उनके साथ पैथोलॉजिस्ट थे उनके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाहदीन साहब उनका नाम था, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। मैं बड़ी उम्र के हैं, 70 से अबव है, उनसे बड़ा प्यार करता हूं और उनसे अक्सर कहता हूं दर्स में आप तशरीफ लाएं, तो वो शायद उनकी कोई मसरूफियत हो तो वो अक्सर नहीं आ सकते, तो मुझसे कहने लगे, मैं एक जगह गया, जगह का नाम नहीं लेता, टोकरी में नोट पड़े हुए थे, सामने लाइन बनी हुई थी, बाबा जी बैठे थे, जो उस दौर में 100 का नोट बहुत बड़ी हैसियत था, आज का 5000 का नोट है, जो 10 रुपए देता था उसको ऐसे कर देते थे, ऐसे हाथ से, ठीक है जा मेरे पार, यानी वो मैं अपनी तौर से कह रहा हूं। अच्छा, जो 20 रुपए देता था उसको ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा देते थे, जो 50 देता था उसको थपकी देते थे, और जो 100 देता था उसकी गर्दन पे जैसे मैंने हाथ रख के ना अच्छा सा थापड़ा दी, अच्छी सी थपकी दी है, ऐसे मजेदार किस्म की, पूरी खुशू खुशू के साथ ऐसी थपकी देते थे, ऐसी। अब मैंने सोचा मैंने 10 वाली थपकी लेनी है, 20 वाली, 50 वाली या 100 वाली, कौन सी थपकी लेनी है, अब मैंने कौन सी थपकी लेनी है। खैर, बुजुर्ग होंगे, उनकी थपकियां होंगी, मेरी समझ में नहीं, मैं किसी पे एतराज क्या कर सकता हूं, मुझे तो जो मदीने वाले से फैज मिला मैं मखलूक में वो बांट रहा हूं, मेरे सामने ये दुनिया नहीं खुली होगी, यही मैं कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं। लेकिन मैं कभी सीरत की किताबें बहुत पढ़ता हूं, अब भी पढ़ता हूं, और शुरू से मेरा शौक किताबें था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, मैं लाइब्रेरी में मैं होता था। अब भी कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों में मेरे दस्तखत हैं। जो किताब फट जाती थी मैं उसकी जिल्द करवा के रखता था, आने वाली नस्लों को फायदा हो। लाइब्रेरी में ही होता था और खूब पढ़ता था। मैं सीरत की किताबें भी पढ़ी, सूरत की किताबें भी पढ़ी, तिब की, दूसरी भी, मुख्तलिफ मौजूआत की, और फिर कुछ उलमा से पूछा भी सही इस माले में, बड़े बड़े दरवेशों से, जैसे मैंने एक दरवेश का नाम लिया, उनसे भी पूछा। मुझे कहीं समझ नहीं आई कि मेरे आका मदीने वाले के पास कोई बंदा आया हो और उन्होंने थपकी दी हो और जहां कहा, हत्ता के एक को थपकी दी। पता कैसी दी? एक बंदे ने लोटे में पानी भर के रखा मेरे आका की खिदमत की, हुजूर खुश हो गए, शहनशाह की मौज में आ गए, और आपने फरमाया मांग क्या मांगते हैं? और उसने पता है क्या मांगा? क्या मांगा? उसने कहा, हुजूर जन्नत में आपका साथ, आपकी मईयत, जन्नत में आपका साथ। और मांगा, देखो क्या मांगा ही, क्या मांगा? तो आका ने बताया आगे क्या फरमाया, ये सुनने वाली बात है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा फिर ठीक है, नवाफिल की कसरत से मेरी मदद करना। किसी को मेरे पर तरस भी नहीं आता। हजरत को जितने रगड़े दिए दिए जाऊं, तरस भी नहीं आता। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब रूठ गए हैं तो मनाने नहीं आया, मुद्दत से कोई शख्स रुलाने नहीं आया, जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया। कोई दवाई कर दे, कोई दामी कर दे मेरे ऊपर, मैं भी मोहताज हूं। कोई मेरा तसव्वुर करके सेहत का दम कर दे, कोई नफिल पढ़ दे, कोई नफिल हाजत पढ़ दे, या अल्लाह इसको आफियत दे, इसको छींके हैं, नजला है, जुकाम है, हल्का बुखार भी है साथ, कई दिनों से चल रहा है और घुटनों में दर्द, अब तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जाती, चढ़ चढ़ के घुटने खत्म। तो कोई इसको कह दे, या अल्लाह इसको सेहत दे दे, या अल्लाह इसको जल्दी जन्नत में भेज दे। तो क्या अर्ज कर रहा था? आपने फरमाया नवाफिल से मेरी नवाफिल की कसरत से मेरी मदद करना। फिर ठीक है, जन्नत मेरा साथ मांगे ना, तो नवाफिल की कसरत से मेरी मदद करना। ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया जा बेड़े पार है, बस जो जो करता रहे सो करता रहे, नहीं फरमाया। मेरे मदीने वाले ने मुझे जिंदगी एक, मुझे आपको एक जिंदगी दी है, और जिंदगी गुजारने का एक सलीका और जिंदगी गुजारने का एक तरीका दिया है मेरे आका ने, और वो दी है कदम कदम पे अमाल, कदम कदम पे। कोई शख्स ऐसा नहीं मिला तारीख सीरत की सारी मेरे मदीने वाले की, कि आया हो और उसको ऐसे थपकी दियो जा तो कामयाब है। मेरे आका तो इशारा काफी था। अरे जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, उनके इशारे से और कुछ हो सकता था? जिनके इशारे से, और इशारा भी वो है जो नबूवत मिलने से पहले का है ना, पंगोड़े में थे या नबूवत के बाद है, इसकी तहकीक कर लीजिएगा, मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा, मुझे इसमें इश्काल है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में एक सबक है हमारे पास, इन लोगों का दरवाजा बंद करें, और फिर इनका दरवाजा बंद करते हैं इन पांच सूरतों और छह बिस्मिल्लाह के साथ। मेरी आपसे मिन्नत है, इस सूरत तो इन पांच सूरतों को हर बंदा याद कर ले। अच्छा, वो सहाबी ने जब आका की बारगाह में अर्ज किया, हजूर दुखी बहुत होता हूं, परेशान होता हूं, तो हजूर ने क्या फरमाया, जब भी सफर में जाकर 6 बिस्मिल्लाह पढ़कर, कैसे, पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के ये सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया कर पूरी, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर पढ़ के सूरत इजाजा नसरुल्लाह पढ़ लिया कर, सिर्फ सूरत तब्बत यदा छोड़नी है दरमियान में, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत कुल वल्लाह, बिस्मिल्लाह सूरत फलक और बिस्मिल्लाह सूरत नास और आखिर में फिर बिस्मिल्लाह। तो ये 6 बिस्मिल्लाह और 5 सूरतें हो गई, ये 6 बिस्मिल्लाह और 5 सूरतें हो गई। वो गुलाम जो है मेरे मदीने वाले के, उन्होंने जब ये पढ़ा और कुछ अरसे के बाद आए आका की बारगाह में, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, मैं सबसे ज्यादा सुखी रहा और सबसे ज्यादा बेहतरीन रहा इस मुबारक अमल की बरकत से, सबसे ज्यादा सुखी रहा। अच्छा, मेरे जिंदगी में मुशाहिदात हैं और लोगों के भी मुशाहिदात हैं, इस अमल के करने वाले को सफर में ऐसी जिंदगी आसान रहती है, ऐसा सुकून रहता है, गैब से सारे निजाम पूरे होते हैं, गैब से सारी जरूरतें पूरी होती हैं और साबे खादिम बन जाते हैं और ये मखदूम होता है और अल्लाह इसको नुसरत भी, इज्जत भी, बरकत भी, सेहत भी, आफियत भी और हिफाजत भी, लुटने से हिफाजत, छीनने से हिफाजत, छपटने से हिफाजत, गुम होने से हिफाजत। ऐसी अजीब चीज है। और अगर आप ये सुबह शाम अमल कर लें, लाइलाज बीमारियों से बचने वाला बंदा, लाइलाज बीमारियों से बचने वाले बंदे को मैं आखिरी 6 सूरतें बताया करता हूं। लाइलाज बीमारियां, लाइलाज बीमारियां अगर हैं तो बच जाएंगे, अगर बचना चाहते हैं और आइंदा का तहफ्फुज चाहते हैं तो ये 6 सूरतें, आखिरी 6 सूरतें अपनी नमाज की हर रकात में पढ़ें, या 3 पहले में पढ़ लें, 3 दूसरी में पढ़ लें। हमने वो खिड़कियां खोलनी है जिसमें खैर है और वो दरवाजे बंद करने हैं जिसमें खैर नहीं है और जहां से शर आता है, जहां से शर आता है वो सारे शर के दरवाजे हमने बंद करने हैं। और शर के दरवाजे बंद करने का वाहिद हल सिर्फ आमाल नबवी है। एक दुर्वेश ने शैतान को देखा, उसको देखा तो उसको गाली दे दी, वो फूल के कुप्पा हो गया। किसी ने कहा इसको गालियां देने से कुछ नहीं होता, और शैतान को अगर खत्म करना है तो अल्लाह का जिक्र कर, आमाल कर, ये एक पल में मिट्टी हो जाता है और खत्म हो जाता है। आप मेरी सारी बातें सुने, और कल से मैं बातें कर रहा हूं और पिछली बातें भी मेरी नेट पे मौजूद हैं, उन सारी बातों का निचोड़ निकालें। मेरा मकसद पुरअमन मुआशरा है, पुरअमन माहौल है, फिरकावारियत का खात्मा है, दहशतगर्दी का खात्मा है, जिंदगी का चैन और सुकून है, अमन है, हर फिरका, हर मजहब, हर नस्ल, हर रंग आपस में रवादारी और मोहब्बत और आपस में एक दूसरे के साथ बर्दाश्त का मिजाज है और बर्दाश्त की तबीयत को पैदा करना है, एक कोशिश है, दावा नहीं, अदम बर्दाश्त की कैफियत को खत्म करना है। ये मेरी एक कोशिश है कि मैं चाहता हूं उम्मत इस मिजाज पे आ जाए, उम्मत इस तबीयत पे आ जाए। अच्छा, मैंने एक छोटा सा पैगाम शुरू किया था, छोटे से पैगाम को रब ने फैलाते 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 पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये 5 सूरतें, 6 बिस्मिल्ला, इसी को देख ले, जिंदगी आसान। मुझे बंदे कहते हैं कि जब से अपनी जिंदगी में हमने 6 सूरतों का एहतमाम किया है, घर मेडिकल स्टोर था, खत्म हो गया, घर में बीमारियां थी, खत्म हो गई, घर में मसाइल थे, खत्म हो गए, घर में मुश्किलात खत्म हो गए और घर में उलझनें खत्म हो गई और घर के अंदर नफरतें खत्म हो गई, जगह जगह दवाइयां थी खत्म हो गई, सेहत आफियत और बरकत के रब ने दरवाजे खोल दिए जब से ये सिलसिला शुरू किया। नमाज के अंदर 3 सूरतें पहले, पहली रकत में और 3 बाद में, नाफिल पढ़ते हैं आप, सुन्नतें पढ़ते हैं उनमें, वो चीजें तलाश करें जो चीजें मेरे मदीने वाले ने मुझे आपको दी हैं। और इस फैमिली का हमने दरवाजा बंद करना है, इस फैमिली का 100% बायकॉट करना है या नहीं करना है, और इनको घर जो हमने फ्लैट दिया हुआ है उसका क्या करेंगे। और उनके फ्लैट पे खर्चा भी ज्यादा किया हुआ है। ऐसे दाढ़े हैं, खर्चा ज्यादा करवाते हैं गन पॉइंट पे कि हमारा घर खूबसूरत बनाना है। वो कहते हैं जनाब बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। और उनका घर हम बनाते हैं और बहुत खूबसूरत बनाते हैं, ऐसा खूबसूरत, सारी जिंदगी की दौलत, सारी जिंदगी की दौलत वहीं लगा देते हैं, सारी जिंदगी की दौलत उनके घर पे। और जो अपना कमरा होता है वो उसका खर्चा उससे कम होता है, है बेडरूम का खर्चा कम, और बेडरूम के साथ जो अटैच बाथ होते हैं, मास्टर बेड और उसके साथ जो अटैच बाथ होता है उसका खर्चा कितना ज्यादा नहीं होता। उनके घर का खर्चा हमने ज्यादा कर दिया, हम भी कैसे दीवाने निकले। चलो आप हो गया सो हो गया, अब उनको बेदखली का दावा कैसे करें। एक यह है कि वकील करें किसी का नाम याद रखने के लिए या उनको करने के लिए वकील रखें। एक यह है कि सारी कायनात के बड़े वकील जो मेरे अल्लाह का तारफ करवाने आए थे और उनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक उनकी वकालत का हम देखें कि उन्होंने कैसे वकालत की और उन्होंने कैसे शफकत फरमाई। उन राहों की तलाश करें, उन रास्तों को तलाश करें, उन मंजिलों को तलाश करें और ये चीज देखें, फिर देखें काम बनता है या नहीं बनता। ये जो मैंने आपको 5 बिस्मिल्लाह 6 सूरतें बताई है ना, इसे अगर रोजाना सुबह शाम पढ़ लिया करें, और इस नियत से कि आप किसी न किसी सफर में निकलते हैं, मुझे मीना में एक बहुत बड़े मुफ्ती ने एक अजीब बात बताई। मैंने अपने दर्श में मीना में ये बात कही, मैं कहा आप सारे मुसाफिर हैं ये पढ़ लें, जो फजर के बाद दर्श हुआ, सुहर के बाद हुआ, फिर मगरिब के बाद हुआ, मीना वालों को मेरी बातें को अच्छी लगी, बार बार कहते थे हमें और बात सुनाएं और सुनाएं। वो साहब भी बैठे हुए थे, मुझसे कहने लगे कि हमारे शहर जो इस वक्त बढ़ गए हैं, वो हमारे शहर इस वक्त दूसरे बड़े शहरों को उन्होंने हड़प कर लिए है, जैसे जैसे जो है हमारे लाहौर ने इर्द गिर्द कितने शहर छोटे हड़प कर लिए हैं। लाहौर की हदूद कहां पहुंच गई, ऐसे है या नहीं है? कराची की हदूद कहां पहुंची, रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की हदूद कहां पहुंची, उसने कितने बस्तियां कितने शहर। पहले कोई बंदा अगर रावलपिंडी से जाता था किसी बस्ती में गांव में दूर किसी गांव में, और वो दूर कोई गांव अब इस्लामाबाद शहर बन गया। 1960 में तो वो गांव था, अब वो शहर बन। मुझसे अजीब बात कही, कहने लगे कि ये दुआ शहर से निकलने की नियत करके पढ़ ली जाए, क्योंकि आज हम में हर शख्स बकौल उनके परदेशी है, बकौल उनके परदेशी है। क्योंकि घर कहां उसका कारोबार कहां, घर कहां उसका रकबा, उसकी फैक्ट्री, उसकी जमीन, उसकी दुकान, उसकी जॉब, उसकी सर्विस कहां, अब वो परदेशी है। अगर सुबह शाम ये दुआ पढ़ लें हम, तो हमारे साथ वो मदद होगी जो उस सहाबी के साथ हुई थी, मदद भी, बरकत भी, राहत भी, रहमत भी, खुशियां भी, कामयाबियां भी और हिफाजतें भी। अच्छा, इस अमल में कई वाकयात आए, कई वाकयात कि हादसे होते होते रह गए, मैं छीना झपटी में महफूज रहा, कई वाकयात मिले मुझे तो। अच्छा, ये था कि सफर में कई लोग ऐसे थे, कहने लगे, एक बंदा कहने लगा, जी मुझे मुसलसल उल्टी आती थी, मैंने उल्टी की नियत करके ये पढ़ी, मुझे उल्टी ना आई। एक साहब कहने लगे, मुझे ड्राइविंग के दरमियान ऊंग आ जाती थी, मैंने इस नियत से पढ़ा, मुझे ऊंग ही ना आई, इस नियत से पढ़ा। मैं सफर में हूं, सफर के मेरे आने वाले जितने भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, सफर में आने वाली जिंदगी की जितनी भी मजबूरियां हैं, उन सब के लिए ये वजीफा है। कौन सा? 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूंकि हम जिंदगी के सफर में हैं, पहले शहर छोटे होते थे जहां हमारा घर है मसलन, और हम बड़े दूर चले गए और कितने शहरों को बड़े शहरों ने हड़प कर लिया, और फिर अगर हम गांव में हैं शहर में जाते हैं फिर तो वैसे ही मुसाफिर हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं फिर वैसे ही मुसाफिर हैं, अपने शहर से कहीं दूर जाते हैं ओ मुफ्ती साहब जो मुझे मिले उनकी वजह से फिर हम भी मुसाफिर हैं, तो फिर मुसाफिर के लिए तो बहुत जरूरी है और ये बरकत वाला अमल है। اور مدینے والے کی خیر والا عمل ہے، اور اس عمل کے اندر راحتیں، برکتیں، خوشیاں، کامیابیاں اور سفر سفر میں قدم قدم پہ اللہ کی مدد کے وعدے، اللہ کی رحمت کے وعدے اس کے اندر موجود ہیں. اس عمل کو کیوں بھول رہے ہیں آپ؟ اور اس عمل کے کرنے والے کے ساتھ وہ جو درویش نے لفظ کہا تھا کہ یہ سفر میں بھی جا کے کیا کرتے ہیں، کیا لفظ کہا تھا؟ لوٹتے. یہ لوٹتے کھاتے ہیں، یہ ساتھ جو ظالمان ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ظالم، یہ ان کی لوٹ مار سفر میں بھی اللہ پاک ان سے حفاظت فرمائے گا. یہی شیطانی چیزیں. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو شیطانی چیز کا. ایک بندہ میرے پاس آیا، جبڑا سارا، ٹانکے لگے ہوئے، یہ حصہ سارا، کئی ماہ کے بعد. میں نے کہا کیا ہوا؟ اب سنیں اس کے ساتھ کیا ہوا. مجھے کہنے لگا میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل کا، میں کئی ہفتے بے ہوش رہا، اور بے ہوشی کے دوران میں نے ایک خواب دیکھا. اب خواب سنیے غور سے. خواب یہ دیکھا کہ دو بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایک بندہ کہتا ہے اس کو ہتھوڑا مارو، اس کے یہاں پتہ کیوں مارتا ہے یہ بندہ جو ہے، تجھے کیا تکلیف دیتا ہے؟ کہہ رہے اسی مذاق کرتے ہیں ایسے، پھر ماروں. کہنے لگا اس نے مجھے کھینچ کے ہتھوڑا مارا، اس جگہ جس جگہ میرا جبڑا ٹوٹا، دانت سارے ٹوٹے ایکسیڈنٹ میں، بالکل اسی جگہ. کہنے لگا دوسرا مارنے لگا تو اگلا کہنے لگا خیال کر یہ انمول خزانہ پڑتا ہے، وہ وظیفہ پڑتا ہے. کہنے لگا اچھا، او تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، میں اس کو کچھ نہیں کہتا. وہ چلے گئے. کل ہوش آیا تو میں نے خواب کو پرکھنے کے لیے چیک کیا تو بالکل اسی جگہ ٹانکے، اسی جگہ چوٹ، اسی جگہ زخم، اور اسی جگہ میرا سب سرجری ہوئی تھی جس جگہ خواب میں اس نے ہتھوڑا مارا تھا. اور اگلا ہتھوڑا جو مجھے بچا گیا وہ اعمال نبوی، قرآن اور حدیث کی وجہ سے اگلا ہتھوڑا مجھے بچا گیا. ابھی کون سمجھے گا؟ پہلے تو میری باتیں خواب نظر آتی تھی، مجھے بندہ کہنے لگا جی خواب نظر آتا تھا. پھر میں نے اپنی آپ کی باتوں کو سامنے رکھ کے نیٹ کو جو چیک کیا، جو نیٹ میں گھوما، لگا ساری سائنس ہی آج کل انہیں باتوں پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ روحانیت کیا ہے، غیب کی خبریں کیا ہیں، اور توجہ کیا ہے، اور یہ جنات کیا ہیں، اور جنات اور شیطانوں کے نقصانات نفع کیا ہیں. یہ کہہ لیں گے آج ساری دنیا سائنس اسی پہ لگی ہوئی ہے، اسی پہ لگی ہوئی ہے. اعمال کرنے والے کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. ایک درویش تھے، سفر میں جا رہے تھے، رات کو سوئے، رات کو دو جن آ گئے. اب یہ سن رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، بات سن رہے ہیں. ایک کہنے لگے اس کو چھیڑیں ذرا، یہ شرارت بہت کرتے ہیں. اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک قبرستان کے سے گزرا تو شیخ نے فرمایا ایسے آنکھ کر کے نا، ایسے ہاتھ کر کے، جیسے میرا یہ ہاتھ ہے نا وکٹری کا نشان، دو انگلیوں سے بناتے ہیں وکٹری کا نشان، ایسے ہاتھ کر کے نا، ایسے فرمایا، ایسے کر کے کہہ رہے ہیں اس ہاتھ کے اندر ایسے دیکھ، ایسی آنکھ پہ رکھا نا، ایک آنکھ بند کی، ایسے دیکھ، ایسے جو دیکھا قبرستان، قبرستان میں جنات، بچے بھاگتے پھر رہے، جیسے گھر، فیملیاں، بندے رہ رہے، کوئی سو رہے، کوئی کھا رہے، کوئی پکا رہے. دو بچے کہنے لگے یہ بابا جا رہا ہے اس کے ساتھ، اس کو چھیڑے. کہ چھیڑے ان کو چھیڑے، راؤ چھیڑے. کہنے لگے وہ بچہ بھاگا، بھاگے آئے اور دور، وہ دور بیٹھے تھے نا، کہنے لگے وہ ہم نا گلے کے، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، وہ قیدا ہوتا تھا ہمارا، وہ ہم پڑھتے تھے. تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا میں باندھوں گا، موٹی ماں کہنے لگی، موٹی چوہیا، اور کہنے لگی پتر آج جب میں تو پڑھا یا ہائی کڑھایا یا کہنی بھی ویہر ملا پڑھا یا ہائی کڑھایا یا کہنی. تو نے تجربہ نہیں کیا کہ بلی تجھ جیسے بچوں کو کھا جاتی. خیال کرنا نہ جانا، گلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہیں باندھ سکتا.
वो कहते हैं चलो बचती, हमें पता चल जाता बिल्ली आ गई हम बच जाते हैं। वो बच्चा दौड़ा, उसने कहा छेड़े, ओ बाबा ओ पागल, वही तरह ये हिजबुल बाहर के आम मिलने वो जा रहा है, पर ये देख कान कप्पा चल इधर कर हट। एक बच्चा इधर भागा, हिजबुल बाहर का नाम सुनते शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह उनका सिलसिला, एक इधर भागा एक इधर भागा। ये जो पांच सूरते हैं ये तो इन्हीं का तोड़ है, जो हमारा माल भी खाते हैं, हमें अजियतें भी देते हैं और हमें परेशान भी करते हैं और हमारे लिए हालात भी और हमारे लिए मसाइल भी और हमारे लिए मुश्किलात भी है। हाल इन्हीं का, इस फैमिली का हमने नाता बंद करना है, सोशल बायकॉट करना है। कौन करेगा सोशल बायकॉट? हाथ नहीं खड़े करना है। हाथ खड़े करने से मुराद यह है कि हाथ हमारे हैं, तू जा इधर हम जा इधर। उम्मत को दो चीजें तो खा गई, नारे और हाथ खड़े करने और सड़कों पे टायर जलाने और सड़कों पे निकलने, यही तो उम्मत को चीज खा गई है। और बाकी उम्मत का बचा क्या है? सोशल बायकॉट हमने करना है इस तबर का, इस फैमिली का, जो हमारे घर के एक लग्जरी फ्लैट में रहती है। लग्जरी फ्लैट, लग्जरी अपार्टमेंट कहें, फ्लैट कहें, घर कहें, बंगला कहें, कोठी कहें, क्या कहें, जो घर में रहती है ये फैमिली, जिसको मेरे मदीने वाले के अल्फाज हैं खुबस और खबाइस। माई और मर्द, ये जो फैमिली हमारे घर में रहती है, जिसकी वजह से हमारे घर में झगड़े, आपस में नफरतें, आपस में लड़ाइयां, आपस में तकलीफें और एक गुस्सा, एक उबाल, एक चिड़चिड़ापन, एक हाइपर पना, ये जो हमारी जिंदगी में मौजूद है, ये फैमिली रहती है। और मेरे मदीने वाले ने फरमाया, मेरे मदीने वाले ने फरमाया कि एक अहले बैत के एक बुजुर्ग थे हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ी मुबारक और नेक हस्ती थे हजरत इमाम बाकिर। उनके बारे में मशहूर है कि एक दफा उनको तकलीफ हो गई और तकलीफ की वजह से निस्यान हो गया। उन्होंने उसका इलाज किया, उन्हें बैतुल खला की उन्हें दुआएं भूल गई और उसमें बैतुल खला की दुआ भी भूल गई। फरमाया रोते थे कि मुझे बैतुल खला की दुआ भूल गई। और फिर उसको फरमाया महीनों लगा के फिर याद किया बैतुल खला की दुआ पे कि उनके ऊपर असल में एक तशद्दुद हुआ था बनू उमैया की तरफ से और उस तशद्दुद की वजह से उनके दिमाग पे चोट लगी थी और उस चोट की वजह से उनका दिमाग जो है मुतासर हुआ और उनकी याददाश्त मुतासर हुई। हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले बैत के बहुत बड़ी मुबारक हस्ती, मैं कि वो रोते थे कि मैं ये दुआ भूल गया जिसकी वजह से खैरें मेरे साथ थी और शरूर मुझसे जुदा थे। खैरें मेरी तरफ देखें, खैरें और शरूर मुझसे जुदा थे, खैरें मेरे साथ थी और शरूर मुझसे जुदा थे, ए काश मैं ये दुआ भूल गया। और फिर याद की और हो गई, हो गई। इस दुआ के अंदर कमाल है। और इस फैमिली का हमने नात का बंद करना है, इस फैमिली के रास्ते बंद करने हैं, इस फैमिली को अपने घर से निकालना है, इसके दरमियान आपके दरमियान पर्दे हायल करने हैं। ये हमें परेशान ना करे, ये हमारे घर में परेशानियां ना डाले, ये गिलाजतें खबासतें निजासतें ना डाले, मेरे घर को मेडिकल स्टोर ना बनाए और मेरे घर को अस्पताल ना बनाए और मेरे घर को पागल पागल खाना ना बनाए कि जिसमें हर शख्स चिड़चिड़ेपन और गुस्से में पागल है। मेरा घर पागल खाना ना हो, मेरा घर अस्पताल ना हो। इस फैमिली को जो हमारे ऊपर मुसल्लत है और नजर आती नहीं, बड़ी बात अजीब है, नजर आती नहीं लेकिन जिनकी आंखों को रब ने खोला था और जिनके दिल की सारी आंखें खुली हुई थी, उनका नाम था मोहम्मद रसूलुल्लाह। ان کے دل کی ساری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، میرے رب نے کھول دیا تھا، اللہ کے نے اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا تھا، جن کو انہوں نے یہ فرما دیا کہ ان کا حل سوچو، ان کا حل کرو، یہ تمہارے گھر میں ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ تمہاری نیند میں بھی یہ شرارت کریں گے، اور نیند میں اگر یہ شرارت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھتکار دو، تھوکنا نہیں، تھتکار دو، کس طرف؟ دائیں طرف، بائیں طرف، لیفٹ، بائیں طرف، یہ نیند میں بھی تمہیں، اور خواب آئیں گے تمہیں انوکھے، نمکین خواب، ہاں نمکین خواب آتے ہیں، مائیوں کو زیادہ آتے ہیں، مائی کو نمکین خواب بہت آتے ہیں، مرچ مسالہ زیادہ کھاؤ نا، یا تبخیر ہو، ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، ہمارے ہاں ہوتے تھے پہلے، وہ کہتے تھے میرے پاس خواب آتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں انصاری صاحب، وہ کہتے ہیں او بھائی اس کو گوبھی آلو کم کھلاؤ، گوبھی آلو، وہ گیس اٹھتا ہے، دماغ میں پڑتا ہے، اور جس کی سو کن ہو، سو کن، ایک ہوتی ہے سو کن، سو کن کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کی دوسری بیوی پہاج، جس کی سو کن ہو نا، سو کن ہو، اس کو تو ویسے خواب بہت آتے ہیں، مائیاں میرے پاس کہتی ہیں ٹھہر جاؤ خواب سن، میں کہ مائی خواب لکھ کے لیا، مائی کا خواب سننے بیٹھوں، مائی کی دو کہانیاں بڑی پریشان کون ہوتی ہیں، ایک سسرال کی کہانی، ایک خوابوں کی کہانی، بہت لمبی ہوتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ مائی کی کہانی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ ہمارے خوابوں میں ہمیں پریشان کرتے ہیں، عجیب و غریب پریشانیاں ڈالتے ہیں خوابیں، اس لیے فرمایا ہر کسی سے خواب بیان نہ کرنا، آپ سے بھی عرض کروں گا، اپنا خواب سب سے بیان نہ کرنا، اگر تو وہ خواب سچا ہوا، سن لے میری بات کو غور سے، اگر تو وہ خواب سچا ہوا، تعبیر دینے والا جو بھی تعبیر دیکھا وہی ہو جائے گا، اگر تو وہ خواب کیا ہوا، سچا ہوا، تو تعبیر دینے والا جو بھی تعبیر دے گا اللہ وہی کر دے گا، ہو جائے گا، اسے ہر کسی سے خواب نہ بیان کرنا، جنتریاں اٹھا کے 10 روپے کی ملتی، 5 روپے کی ٹکے کی، وہ کہ اس میں خواب کی تعبیر دیکھ رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ خواب کا ایک پورا فن ہے، خواب کا ایک پورا نالج ہے، خواب کا ایک علم ہے، علم ہے، یہ شیاطین خوابوں میں بھی متاثر کرتے ہیں، اس لیے جو شخص سوتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھے گا، یا باعث ہو یا نور ہو، کیا پڑھے گا، کیا پڑھے گا، یا باعث ہو، بڑے مبارک خواب آتے ہیں، یا باعث ہو یا نوروں کو پڑھنے والے کی فجر نصیب ہوتی ہے، تہجد نصیب ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، دل کے وسوسے ختم ہوتے ہیں، دل کا غم ختم ہوتا ہے، دل کا خوف ختم ہوتا ہے، دل کی ٹینشن ختم ہوتی ہے، اور دل کے اندر کی نورانیت واپس آتی ہے، ذلت ظلمت دل کے اندر کا زنگار زنگ اترتا ہے، کھوٹ ختم ہوتا ہے، اور یہ دل کے نفاق سے دور ہوتا ہے، منافق نہیں مرتا، اللہ اس کو کلمہ نصیب کرتا ہے، جو سوتے ہوئے 11 بار ہر حالت میں وضو بے وضو پاک نہ پاک کوئی شرط نہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے لیفٹ سائیڈ پہ دل ہے بائیں طرف، کیا پڑھ لے، کیا پڑھ لے، یا باعث ہو یا نور ہو، بس یہی پڑھ لے، چلو یہ بتا دیں کسی کو یا باعث ہو یا نور ہو کا فائدہ ملا، کوئی بیٹھا ہے کسی کو فائدہ ملا، آپ کو ملا، اور کس کو ملا، واہ جی واہ، یہ تو بڑی کام کی بات انہوں نے بتائی، کتنی عمر ہے آپ کی، کہتے 60 سال کا بندہ ہے، کہتے ہیں مجھے فوراً نیند آ جاتی ہے اور سکون ملتا ہے، واہ، تو آج تو لوگ نیند کو ترستے ہیں، اچھا نیند آ جاتی ہے، کون سی، گھوڑے بیچ کے سونے والی ہے تو،
اچھا آپ نے کبھی سوچا گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند، کبھی اس پہ سوچا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں اللہ والو، یہ گھوڑے کی خدمت آخری خدمت ہے. وہ ایک بندے نے نا اس کو اپنے خادم کو لگایا کہ تو گھوڑے پہ نا سارا ساری رات اس کی خدمت کر، اس کے خرخرا پھیر، ایسے خرخرا پھیر. صبح جو اٹھا وہ پھیرتے پھیرتے سو گیا، گھوڑا چوری ہو گیا. گھوڑا، تلوار اور عورت جس کے ہاتھ میں اسی کی ہے. اچھا وہ جو ہے نا کرتے کرتے سو گیا، صبح دیکھا گھوڑا نہیں ہے، اس نے پکڑ لیا خرگوش کو، خرگوش موٹا سا خرگوش تھا، اس کو خرخرا کرنا شروع کر دیا. اس کا جو مالک اٹھا صبح، اس نے کہا گھوڑا کیا؟ اس نے کہا ساری رات کے بعد یہی بچایا، ختم کر دیں. ساری رات خرخرا کرتے کرتے یہی باقی بچا ہے. اچھا جی، ایک تو اس سے نیند آتی ہے بہت پرسکون، اور ایسے مختصر بتاتے جاؤ. ہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں جس رات میں یہ پڑھ لوں اس رات تہجد نصیب ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جس ٹائم کو مقرر کروں اسی ٹائم پہ میں اٹھ جاتا ہوں، اور کہہ رہے میرا دوست ہے اس کا نام اکرم ہے، وہ جب بھی پڑھتا ہے تہجد ہمیشہ پڑھتا ہے. ایک جوان بیٹھا ہے ممی ڈیڈی، وہ کہتا ہے اسٹریس ڈپریشن دور ہوتا ہے، اور کیونکہ ممی ڈیڈیوں کا یہ سبجیکٹ ہے نا اسٹریس ڈپریشن، بابوں کا سبجیکٹ کہاں ہے؟ اور ہاں یہ کہتے ہیں میری خالہ جی ان کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، میں نے انہیں بتایا کہ یہ پڑھیں، پھر ان کو سکون کی نیند آئی اور پھر ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا. ایسے نہیں جی، 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، 11 دفعہ یا وائس ہو یا نور ہو پڑا، پھر نہیں ہوا. اور کام کاج میں جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، ہاں جی کہتے ہیں کام کاج میں جتنی مرضی تھکاوٹ ہو صبح بندہ کیا ہوتا ہے؟ فریش ہوتا ہے. اور ہاں خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی اور مسجد نبوی کی، کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس کے پڑھنے والے کو رویائے صادقہ آتے ہیں، سچے خواب آتے ہیں اور مبارک خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کو خواب میں بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں. اور ہاں جی کہتے ہیں تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی توفیق ملتی ہے، نوافل کی توفیق ملتی ہے. اور یا باعث ہو یا نور ہو کا اور کیا فائدہ ہے جو آپ نے پایا؟ بولے جی 3 بندے اور بتائیں، اور وہ بتائیں جنہوں نے پایا ہو. کہتے ہیں نمازیں پکی ہوتی ہیں اور تہجد بھی پڑھی جاتی ہے، دل کو سکون اور چین ملتا ہے. ایک اور اللہ والے فرما رہے ہاں، باقاعدہ پڑھنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اور یہ اس جوان نے اتنی بھاری بات کہہ دی ہے جو 100 سال 40 سال کے غاروں میں چلا کرنے کے بعد بڑے بڑے کتبوں کو، ولیوں کو، غوثوں کو، کلندروں کو، نجیبوں کو، نقیبوں کو، ابراروں کو، بڑی ہستیوں کو نصیب ہوتی تھی. یہ جوان کہتا ہے کہ 40 یا 22 یا نور و پڑھنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور یہ سچ کہا انشاءاللہ، واقعی معرفت نصیب ہوتی ہے. اور ہاں بیٹھے بیٹھے
کہتے جس دن سے اب میں نے یہ پڑھا ہے اس دن سے لے کر اب تک کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ آپ کے ساتھ خواب میں ملاقات نہ ہوئی ہو اور فائدہ نہ ہوا کوئی باتیں ایسے ساتھ خواب میں آئے. اور جی ہاں جی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں بتا رہے ہیں. اور آپ کو روزہ رسول کی زیارت ہوئی اور جی کھڑے ہو کے رات کو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے, صبح نماز کے لیے پریشانی نہیں ہوتی اور جی بولو جی کہتے میں خواب میں ملا ہوں حکیم طارق, خواب میں ملا اور آپ نے باقاعدہ نصیحت کی ہے, دو راستے اختیار کرنے ہیں. اور آخری کوئی ایک بات بتا دے بس. ہاں جی یہ کہتے نماز میں خشوع خشوع دھیان ملا, ادھر سے آواز کیا آئی ہیں؟ کہتے ہیں جب سے تسبیح خانے میں آ رہا ہوں یہ عمل کیا, یہی کہا مجھے تہجد کی توفیق ملی بس, اور کچھ نہ بتائیں مزید. ہاں ہاں کیا دیکھیں میری بات سنیں, یہ فائدے کوئی میں نے بندے تیار نہیں کیے ہوئے کہ آپ نے بتانا ہے آپ نے بتانا ہے, تو مجھے تو پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا, مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن پیغام تو سب کو ملتا ہے اور پیغام ملنے کے بعد ملتا بھی سب کو ہے. اور کیوں ملتا ہے؟ عرش والے وظیفے ہیں اور عرشی وظیفے ہمیشہ خیر کا ذریعہ بنتے ہیں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں, اور عرش کی برکتیں خیر و برکت اور راحت اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے عرشی نظام ہے, اس عرشی نظام کو حیرت انگیز طور پہ پانے کے لیے آج کے بعد یقین کرنا ہے اور آگے ہم نے سوچنا ہے. صبح سوچیں گے صبح بیٹھ کے اس فیملی کا مزید ہم نے سوشل بائیکاٹ کیسے کرنا ہے. فیملی کا پتہ چل گیا نا نشاندہی تو ہو گئی, چور کی نشاندہی یہ بڑی بات ہے. چور کا پتہ پیرا اٹھاتے اٹھاتے پاؤں اٹھاتے اٹھاتے چور تک پہنچ گئے کہ چور رہتے بھی کہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے نا. ماربل میں چینی میں اور شیشے میں اور فانوس میں اور ٹوائلٹ میں لگی کیبنٹ میں اور کیبنٹ پہ پڑے ناولوں میں, میں نے خود دیکھے. کیونکہ جو نان کھائے گا تو پھر یا تو پھر وہ ظاہر ناول پڑے گا تو یا اللہ یا جان نکال یا نان نکال. یہ پیزے یہ بیکریاں تو ظاہر پھر اس کے لیے ناول رکھنے پڑیں گے. ایک ڈر ہوتا ہے بس, آپ سے میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد آج ہم بیٹھ کے بڑا سخت اور لاجواب ذکر کرتے ہیں. ایک اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا, ایک ڈر ہے مجھے بس, اور اپنے بارے میں بھی ڈرتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں. آپ بھی ڈریں اپنے لیے مانگیں میرے لیے بھی میری نسلوں کے لیے. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جو وقت مصلی پہ لگنا ہے وہ بیت الخلاء میں نہ لگ جائے, بس یہ ڈرتا ہوں جو وقت مصلی پہ لگنا تھا وہ وہاں نہ لگ جائے, جو وقت تسبیح پہ لگنا تھا جو وقت تلاوت پہ لگنا تھا جو وقت کریم کی محبت پہ لگنا تھا وہ وقت وہاں نہ لگ جائے. کس کا بچہ ہے؟ کس کے ساتھ؟ وہ وہاں نہ لگ جائے. مجھے جس سے ڈر لگتا ہے وہاں نہ لگ جائے. آپ بھی ڈریں گے؟ آپ بھی ڈریں گے؟ اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے یا اللہ وہ وقت وہاں نہ لگ جائے. اس سے میں آپ بھی احتیاط کریں اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں مانگتے بھی رہیں. تو فیملی کی پہچان ہو گئی نہیں یہی چور ہیں, چور کا پتہ تو چل گیا نا, اب چور کا ہم نے پیچھا کرنا ہے اور اتنا پیچھا کرنا ہے
کہ چور کو پتہ چل جائے کہ یہ گھر میرے رہنے کے قابل نہیں ہے، کہ میرے آقا نے فرمایا جہاں سلام ہوتا ہے یہ شیاطین اعلان کرتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ کھانا نہ پینا، نہ کھانا نہ رہنا، نہ رہائش نہ خوراک، اس گھر میں ہے ہی نہیں، اس گھر سے نکلو، اس گھر سے نکلو، اس گھر سے نکلو. ہاں کیا کہتے؟ وہ تو ایسی بات ہوئی تھی. اور ایک بات سے اور ڈر لگتا ہے، ایک بات سے اور ڈر لگتا ہے، اور وہ ڈر لیے لگتا ہے، ایک بات سے اور ڈر لگتا ہے کہ اگر ہمارا وقت مصلی پہ، تسبیح پہ، نماز پہ، اعمال پہ، اور اللہ کو کچھ وقت اگر ہم نے نہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ وقت ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ٹوائلٹ بیت الخلاء میں نہ لگ جائے. اور لگ رہا ہے، لگ رہا ہے. آپ ہسپتالوں میں جائیں، مریضوں کے ساتھ ہفتوں لوگ باہر بیٹھے اور بیچارے پریشان بیٹھے، ہفتوں ہفتوں مہینوں بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. خوفناک صورتحال ہے، خوفناک صورتحال. صبح میں آپ کو مجھے یاد دلائیے گا، اگر میں خدا نہ خاصتا بھول جاؤں، صبح انشاءاللہ تعالی جو ہماری نشست ہوگی اس میں میں ایک چیز اور بتاؤں گا کہ اس کا، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے ایک اور حیرت انگیز چیز بتاؤں گا، جس کے کرنے سے ایک پل میں مریض یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، لا علاج مریض، لا علاج مریض، اور کہتے ہیں کھانا دو پینا دو، اور اگر اس کو کچھ دن مزید کیا جائے خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے، خود چلتا ہے، خود اٹھتا ہے، خود بیٹھتا ہے، اور اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور دوائیں یہ گئیں، علاج یہ گیا، اور سب کچھ یہ گیا. اور وہ انہی شیطانوں کی خباثت ہوتی ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے، اور ان کی بدعنوانیاں، ان کی چوریاں، اور ان کی جو ہے وہ مکر و فریب کو میں جو بتا رہا ہوں، ان میں ان کے بتانے کے لیے جو چیز میں صبح آپ کو انس کروں گا انشاءاللہ، صبح بھی ہم نے انہی کی بات کرنی. اس فیملی کا کچھ کرنا ہے، گھر میں رہ رہی ہے، گھر ہمارا، ان کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے ہمیں مالک بنایا، یہ ہمارے گھر کے سب سے بہترین نظام کو اور سے بہترین کمرہ انہوں نے چنا ہوا ہے، اور ہمیں ہر دفعہ ستاتے ہیں، روز تنگ کرتے ہیں، ہماری نسلوں کو بے راہ روی پہ لگاتے ہیں، اور ہماری نسلوں کو پریشانیوں پہ، گناہوں پہ، بدکاریوں پہ، اور ہمارے گھروں کو جھگڑے، لڑائیاں، پریشانیاں اور بے اولادیاں اور مسائل پیدا. تو یہ ان کا کیا پیچھا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. ہم سے بھول پتہ ہے کیا ہوئی؟ ہم دشمن کسی اور کو بنا بیٹھے، محلے میں اس رنگ والے کو، اس نسل والے کو، اس فرقے والے کو، اس علاقے والے کو، اسی کے بارے میں ہم دشمن اس کو سمجھ بیٹھے. جو گھر میں دشمن ہے، گھر میں دشمن ہے، اس کو بھولیں. اچھا آپ سے ایک سوال ہے، جواب دیں گے؟ میری طرف دیکھیں سارے، پہلے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، ایک پل میں بیٹھ جائیں، ایک پل میں، ایک پل اور میں، جزاک اللہ، بیٹھ گئے. ایک سوال کا جواب دیں. اگر سڑک پہ کنکر ہو، اچھا اس کا جواب میں صبح لوں گا آپ سے، ساری رات سوچیں آپ، اور میں سوال کر کے آپ کو چھوڑ دوں گا، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی میری بات سنیں، آپ بھی سنیں. اگر سڑک پہ کنکر ہو، سڑک پہ کنکر ہو، سڑک پہ کنکر ہو، تو ہم جوتا پہن لیں گے، تو اگر جوتے کے اندر کنکر ہو پھر کیا کریں گے؟ سوچیں ذرا بات. اگر سڑک پہ کنکر ہو تو اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ جوتا ہے. اور اگر چنکر کے بغیر چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے سڑک پہ. اور اگر سڑک پہ، راستے پہ کنکر ہو، ہم جوتا پہن لیں، اور اگر وہی کنکر اندر ہو، میرے خیال میں اس کی تکلیف باہر والے کنکر سے زیادہ ہوتی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا، تجربہ ہوا؟ بہت زیادہ ہوتی ہے بے چینی، بہت زیادہ تکلیف. अगर वो कंकर अंदर रह जाए, सारे पांव को छील के ऊपर नीचे से रख देता है, उस कंकर का क्या करना है, ये हम सुबह आपसे पूछेंगे फिर, उस कंकर का क्या करना है। और वो कंकर हम निकाल भी नहीं सकते, ये भी बड़ा मसला है, उसने जूते के अंदर रहना है। हाँ, अब आपसे आपका सवाल पूरा हुआ है जो मैंने सुबह आपसे पूछना है, सोना है, ऊंघना है या रोना है, वह आपकी मर्जी है, क्योंकि रातें हैं छोटी, नींद तो पूरी आपकी होती नहीं। फिर आप खुद देख लें, अगर वो कंकर बाहर है और वही कंकर अगर अंदर चला जाए फिर क्या बनेगा, और निकाल भी ना सके, हमारे बस में ना हो, वो कंकर कितना तकलीफ देगा। हमारे एक उस्ताद थे, वो अजीब सजा देते थे। मैं कुरान पाक पढ़ने जाता था रोजाना एक घंटा, मैं नादरा पढ़ा हूं, हाफिज तो नहीं हूं। तो वो क्या करते थे, दो भाई होते थे, बड़े सताते थे, उनको कहते थे सो जाओ, ऐसे सो जाते थे, आंखें नहीं हिलानी, डंडा साथ पड़ा होता था, मुंह नहीं हिलाना, आंखों पे चेहरे पे पानी पानी फेंकते थे, है ना, चीनी डालते थे, चीनी डाल के फिर पानी फेंकते थे, कहते चुप करके सो जाओ। अब ऊपर बैठती थी मक्खियां, ये अनोखी सजा है। मैं कहता हूं दुनिया की कोई आखिरी टेंशन है ये। देखिए सदा भी लाजवाब है। हाँ, एक का नाम होता था हजूरी, दूसरे का नाम जहूरी, कोई हजूर बच्चों का जहूर बताए हो, मुझे याद नहीं। अच्छा, वो दोनों तंग बहुत करते थे, बहुत सताते थे, तो वो ऐसे सो गए, ठीक है, और चीनी लिया, उनके मुंह पे चीनी छिड़क दी, आंख हिलाने का भी, आंख हिलाएंगे तो मक्खी उड़ जाएगी। अच्छा, उसके ऊपर पानी का छींटा मारा, यूं पानी का छींटा मारा, मक्खियां शुरू हो गई। अब लेटे रहो, चल, वो ऐसे कहता था, ऐसे बंद करके, उस्ताद जी सबक याद करो, तू आंख मुंह हिला रहा, मुंह हिला रहा, चल, उसको डंडा लगता था पांव पे, पिंडली पे, कहीं उधर ऐसे करे, मुंह बंद करके पड़ा रहता, मक्खियां शुरू हो गई। फिर जहां देखा मक्खियां थोड़ी हुई, चीनी का छट्टा और मारा, पानी का छट्टा और मारा। इस सवाल का जवाब सुबह जूते का मुझे जवाब चाहिए आपसे, देंगे ना। अब आपका दिल मचल रहा है कि या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, कोई ऐसा हो। अब अल्लाह का जिक्र करना है अल्लाह के ध्यान के साथ, किसके ध्यान के साथ, और फिर मुराकबा करना है, और मुराकबा मैंने अर्ज किया था, सारे सारे के सारे अल्लाह के नेक बंदे मुराकबा करते थे, और मुराकबा गार हिरा की इबादत है, गौर व फिक्र। और मुराकबा यह करना है कि अर्श से अल्लाह का नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा, इस तसव्वुर के साथ पहले आदत बना ले, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। अब ये मुराकबा करना है और इस मुराकबे में तवज्जो करनी है और जिक्र करना है, तो जिक्र शुरू करें पूरी तवज्जो के साथ, इधर कोई ध्यान ना हो, उधर कोई तसव्वुर ना हो, उसको ना देखें। क्या ख्याल है, अगर हमें दर्द लगा हो और हाय हाय कर रहे हो, क्या उधर दर्द देखेंगे कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, हमें तो अपनी पड़ी हुई होगी, क्या नहीं पड़ी होगी। मैं आपको जिक्र का तरीका बता रहा हूं, जिक्र कौन सा, अल्लाह के ध्यान वाला, अल्लाह की तवज्जो वाला, अल्लाह के नाम के इस्तेहजार वाला, मैं आपको वो अर्ज कर रहा हूं। इधर उधर कोई ध्यान, इधर उधर कोई आंखें नहीं, आंखें बंद, सर झुका हुआ अल्लाह के सामने, गुलाम बन के, मोहताज बन के, आजिज बन के, भिखारी बन के, मंगता बन के अल्लाह का नाम ले, अल्लाह को आएगा तरस, तेरे सारे काम एक मिनट में बना के रख देगा। मुझे एक बंदा कहने लगा, हमारे साहब भी अजीब मूडी हैं, जिस बंदे से नाराज हो जाए उसकी सारी फाइलें रोक लेते हैं, और जिससे राजी हो जाए उसकी सारी फाइलों बैठ के एक पल में दस्तखत कर देते हैं। मैंने कहा वाह,
اللہ کو راضی کر لیں ایک پھل میں، مولا یہ شادی کی فائل ہے کرے اوکے کر دو، مولا رزق کی فائل ہے فرمائے اوکے کر دو، مولا بیٹوں کی فائل ہے اوکے کر دو، بیٹیوں کی عزت کی آبرو کی صحت کی شفا کی کامیابی کی راحت کی کرے اوکے کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ورنہ ناراض ہو کر اس کی فائلیں پینڈنگ میں رکھو، ذرا چھوڑو اس کو، ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کہانی چلتی ہے. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے کہ کریم کو ترس آ جائے اور کریم کو رحم آ جائے اور کریم ہمارے کام بنا دے. کریں گے دھیان والا توجہ والا ہیں؟ ہمارے ایک مستری صاحب تھے، ان کو کہتے تھے استاد عاشق فراڈیا، اتنا بیچارہ فراڈ کیے کہ نام کے ساتھ اگر فراڈیا نہ کہیں تو ان کا پہچان نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ میں ان کو ساتھ لے گیا ایک ذکر پہ، ابھی میں اپنے حضرت سے بیعت نہیں ہوا تھا، ایک ذکر پہ، ایک اللہ والے آئے ذکر پہ لے گیا، ایک میرے دوست اور بھی ساتھ تھے، لائٹیں بند ہو گئیں، اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا، استاد عاشق یوں سر جھکا کے نا، بالکل ایسے سر جھکا کے رو رہا، بہت زیادہ زاروں قطار رو رہا. میں کہ یا اللہ آج استاد عاشق نے کوئی توبہ ہی کر لی، استاد عاشق کو تو اللہ اتنا یاد آیا اور مجھے استاد عاشق پہ رشک آ رہا ہو، حتیٰ کہ استاد عاشق رو رہا، ذکر ہو رہا، تسبیح ہو رہی اور لائٹیں بند ہیں، ہر طرف اللہ کے نام کا نور جلوہ اور استاد عاشق رو رہا، زاروں قطار رو رہا. یا اللہ تیرے کریم ہے، ایک پل میں دل بدل دے، تیرے قبضے میں ہے. آخر جب لائٹیں جلی استاد عاشق رو رہا، میں کہا استاد جی خیریت تو؟ کہنے لگا گردے کا درد پڑ گیا. اچھا، میں نے کہا استاد عاشق یہ میں نے کہا شاید استاد عاشق نے توبہ کر لی ہے، گردے کا درد پڑ گیا، کوئی دوائی کرو میری، کہہ رہے میرا کوئی علاج کرو. اللہ کا نام، اللہ کے دھیان سے اللہ کا نام، اللہ کے دھیان سے اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ بس اس کی مشق کرنی ہے. کرتے کرتے ایک وقت آئے گا اللہ دے ہی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب سر چکا لیں، اللہ کی طرف دھیان بنا لیں اور توجہ کر لیں، اور اللہ کا دھیان توجہ یقین کے ساتھ اپنی نشست کو بدلیں. اگر ٹیک لگائے ہوئے ہیں نہ ہیں، ایک طرف ہو کے نشست کو بدل کے اللہ کے نام کو ادب کے ساتھ لیں، اللہ کے نام کو ادب کے ساتھ لیں، اور اللہ کے نام کو ہمیشہ ذکر میں ٹیک سے ہٹ جایا کریں، نشست بدل دیا کریں، اپنی کیفیتوں میں سمٹ جایا کریں. کیوں؟ کتنی عظیم ہستی کا نام لے رہا ہوں. ہاں، یہ ادب کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله 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 تیرے کرم سے سارے کام بنے ہیں، تیری شفقت سے سارے فضل ہوئے ہیں، تیری رحمت سے تسبیح خانے میں آئے ہیں، اور تیرے ہی کرم سے مولا تو نے ہمیں یہ بٹھایا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ایمان کا معاملہ فرما، اور فضل اور کرم کا معاملہ فرما۔ دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما، دنیا آخرت کے شرور سے پناہ عطا فرما۔ اللہ جتنی بہنیں بھائی آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سب کو قبولیت مقبولیت محبوبیت عطا فرما۔ اللہ سب کو قبولیت مقبولیت محبوبیت عطا فرما۔ اللہ ذلت علت اور قلت سے بچا، سب کی دعائیں قبول فرما۔ دنیا کے جس کونے میں کوئی بیٹھا ہے اس کی دعائیں قبول فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کے مسائل حل فرما۔ مولا تو کرم کے دروازے کھول دے، کریم ہے فضل کے دروازے کھول دے، رحیم ہے رحم کے دروازے کھول دے۔ اپنی عطاؤں کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ تو کرم کرنے پہ آتا ہے تو رحم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فضل کرنے پہ آتا ہے تو ساری طاقتوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ اپنی ساری رحمتوں کو اور اپنی ساری قوتوں کو اور اپنی ساری طاقتوں کو متوجہ فرما، ہماری ساری ضرورتوں کو صدا غیب سے پورا فرما۔ در در کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا، در در کا بھکاری نہ بنا، بس اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا فقیر بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ مددگاری فرما اور ہماری رہبری فرما۔ اللہ جتنے دعاؤں کے لیے کہا چاہا ان کی دعائیں پوری کر دے، جتنے آئے ہیں یہاں ان کی حاضری کو قبول کر لے۔ اللہ خاص طور پہ خواتین کی قربانی زیادہ ہے، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما کر، اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر کر دے، ان کی نسلوں کو شاد و آباد کر دے، ان خواتین کی نسلوں کو شاد و آباد کر دے۔ مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ذلتوں میں ڈوبوں کو ذلتوں سے نکال دے، علتوں میں ڈوبوں کو علتوں سے نکال دے۔ کامیابیوں کو متوجہ فرما، کامیابیوں کو مقدر فرما، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری ساری مشکلیں بہت حل فرما۔ ہمیں دنیا میں بھی خیریں دے دے، ہمیں آخرت میں بھی خیریں دے دے، ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں دے دے،
ہمیں آخرت میں بھی خوشیاں دے دے، ہر خوشی کو قریب کر دے، ہر شر کو ہم سے دور کر دے، تو راضی ہو جا سخی، تو راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا شہنشاہ، اپنی رضا کا اعلان فرما دے، اپنی رضا کا اعلان فرما دے، اس اجتماع کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، ہر فتنے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے لیے وسعت عطا فرما، اللہ دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے جگہ دے دے مولا، بڑی تنگ بیٹھی ہیں تیری بندیاں اور بڑی قربانی سے آنے والوں کا استقبال کر رہی ہیں اور سب کو برداشت کر رہی ہیں اور سب کو راستہ اور جگہ دے رہی ہیں، اللہ ان کی آج اس قربانی کے لیے فیصلے کر دے اور ان کی ان قربانی پہ فیصلے کر دے، کوئی بڑی جگہ غیب سے دے دے اور اس میں سارے انتظام غیب سے کرا دے، میرے پاس مولا کچھ نہیں، میں بھکاری ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں مولا، میں تیرے بندوں سے سوال نہیں کر سکتا، کرتا ہوں تو بھکاری بن جاتا ہوں، میں تجھ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ پردیسی آمین کہیں گے اور میرا کام بچ جائے گا، مولا اس لیے کر رہا ہوں کہ پردیسی آمین کہیں گے میرا کام بن جائے گا، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، اے اللہ کوئی وسعت عطا فرما اور اس اجتماع کے لیے غیبی نظام بنا، غیبی نظام بنا، تیری مخلوق کو راحت پہنچے، تیری مخلوق تکلیف سے دور ہو جائے، تو دنیا میں بھی خیر دے دے، تو آخرت میں بھی خیر دے دے، تو دنیا میں بھی برکتیں دے دے، تو آخرت میں بھی برکتیں دے دے، آنے والے کسی بھی فرد کو خالی نہ ملا، مولا ان کی نسلوں کو، ان کے رزق کو، ان کے گھروں کو، ان کی عزتوں کو، ان کی مال جان کو اعلی چار چاند لگا دے، بس مانگ، بس من مانگے دے دے، بس من مانگے دے دے، بس من مانگے دے دے، آمین آمین آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب.